चलेंगे। आज का सबक भी बहुत ही अहम है, कल चूंकि एक टेस्ट भी हुआ और प्लस ये है कि कुछ पिछले सबक जो थे उनके कुछ कमेंट्स थे, तो ये लिखती हैं कि एक और खूबसूरत लेसन, कुरान पढ़कर ही मालूम चलता है कि शरीयत कितनी आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। खामोशी की भी एक जुबान है, इस बात को आज समझने की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमारे अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां ले आए। हराम हलाल के बारे में सब कुछ डिटेल से पता चला, खिंजीर के बारे में भी बहुत डिटेल से इंफॉर्मेशन मिली। अब अगर कोई गैर मुस्लिम है मुझे इसके बारे में पूछे तो मैं बता सकती हूँ कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। इल्म के बगैर तो ये मुमकिन नहीं होता ना। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी गहराई मिली आज के सबक में, सब्र सब्र और ज्यादा सब्र, खुशी में गम में जैसे वो अर्रहीम बहाने ढूंढता है हमारी बख्शिश के लिए। ए अल्लाह हमें आखिरी दम तक अपने साबिर और शाकिर बंदों में रखना। और वाकई वो खालिक जो एक माँ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ने वालों में कर दे और हमारी कोशिशों को कामयाब करवाए। मुश्किलात में सब्र से काम लेना है, अपने दुख दूसरों से बयान नहीं करने, अल्लाह ताला से बातें करनी है, इससे ताल्लुक जोड़ना है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो फौरन कोई सदका निकाल दो और नमाज पढ़ लो, यानी नफिल पढ़ लो। हकीकत है, इससे इंसान को फायदा होता है। ये टेस्ट के बारे में लिखती हैं कि माई फीलिंग्स, टेस्ट की तैयारी करते हुए पहले तो बहुत फिक्रमंद थी कि तैयारी कैसे करूं, उठते बैठते सोते, जब जरा सा होश आता तो पारा खोलकर पढ़ती थी। टेस्ट हो गया अल्लाह के एहसान से, और खुश भी थी कि आसान था और किसी हद तक इसको करने की कोशिश भी की है। बाद में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इस दुनिया के टेस्ट के लिए दिन रात एक किया और तैयारी की, और आखिरत की तैयारी का क्या किया? जब आमालनामे हमारे हाथों में दिए जाएंगे तो कौन लोग ज्यादा खुश होंगे? जब लोगों यानी स्टूडेंट्स को खुश देख रही थी तो ये सोच रही थी कि अल्लाह करे कल कयामत के दिन हम सब इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा खुश हों इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें असल आखरत के टेस्ट की फिक्र लगा दे और हम कामयाब लोगों में से हो जाएं। अगर उस टेस्ट का पता चल जाए तो ये दुनिया की सारी जो है ना खत्म हो जाए हमारी अकड़ और भागदौड़। बहरहाल ये लिखती हैं कि वसीयत के बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ, बाकी जो कुछ भी सुना बहुत अच्छा सुना, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बना दे। चलते रहिए, सुनेंगे, कुरान में तो आएगा अगर आप आते रहे तो। हाँ, कुछ चीजें वक्त के साथ आती हैं, आपको खुद नहीं पता होता लेकिन पढ़ाने वालों को भी पता होता है और अल्लाह को भी पता कितनी आनी है। तो अभी तो सिर्फ चखी है आपने वसीयत, आगे जाके इंशाल्लाह आप सुनेंगे। ये लिखती हैं कि टूडेज लेसन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गेव मी आ कैरियर व्यू ऑफ रॉन्ग डू, यानी ये कहती है कि आज के सबक ने मुझे डूज एंड डोंट्स के बारे में एक क्लियर चेकलिस्ट दे दी है कि मुझे इसमें क्या करना है। एट फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस, देन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट थ्रू इट एंड इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट एज आई थॉट, यानी टेस्ट शुरू में इनको मुश्किल लगा लेकिन बाद में आसान हो गया। देखिए जो पढ़ते हैं ना, सच कहिए कि अगर आप लोगों को लगता भी है ना कि अगर तैयारी हुई है मेसअप हो गया टेस्ट भी नहीं अच्छा हुआ, मिसाल है, हो सकता है, डोंट वरी, आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं गया। फिक्र वो करें जो टेस्ट को सीरियस नहीं लेते या हिम्मत ही नहीं करते कि हम दे सकते हैं। पढ़ा हुआ अंदर किसी खाते में जमा हुआ है, वो आज नहीं कल दोबारा निकलेगा, 5 बारों का इकट्ठा टेस्ट भी तो देना ही है ना, फिर उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। आप ये देखिए जरा, आप इन किया मजाले ऑनलाइन वालों तक भी पहुंची होगी। उस्ताजा जी मैंने एक लफ्ज का रूट वर्ड शायद सही नहीं लिखा, बाद में मेरी फीलिंग यही थी कि अगर मेरे साथ कब्र में या हशर में ये मामला हुआ तो क्या होगा। बस अल्लाह हमें आखरत के टेस्ट की भी इसी तरह फिक्र लगा दे। असल ये देखे, टेस्ट तो वो है, ये तो खेल है। अल्हम्दुलिल्लाह ए अल्लाह बार बार जब भी कोई सबक खत्म होता है तो तेरा शुक्र अदा करती हूँ, बल्कि हर सांस में तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत की तलबगार हूँ कुल मोमिन मुसलमानों के लिए। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत और मुकम्मल दीन है हमारा दीन, ए अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत देना और इल्म को अमल में लाने की तौफीक। तौफीक का लफ्ज ता से होता है, जिन्होंने भी लिखा तो इसे लिखा हुआ है, तौफीक दे और फिर आगे पहुंचाने की तौफीक भी देना, आमीन। What really stood out for the today was the very comprehensive, clear list Allah has given us to explain what birr is. लैसल बिर्रा पे इनका है कि हकीकत है, एक आयत के अंदर अल्लाह ने हमें पूरे दीन के डूज एंड डोंट्स दे दिए. आई ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम सिस्टर आमनास बर्ड एंड हंटर्स एग्जाम्पल. After the test, I feel disappointed with myself that I didn't make more time to revise because the test was not as difficult as I thought. So I worked it harder. I could do really well, inshallah, for the next time. कोई बात नहीं, इस टेस्ट से ये सबक सीख लें कि आपने अगले टेस्ट की तैयारी पहले करनी है. बल्कि इधर किसी का मैं एक और भी पढ़ रही थी, हो सकती है अभी आता है. आज के सबक में आपने जो चार किस्म के मुसलमानों का बताया है, या इतबिर में बताया था, दुख की बात यह है कि आज हम भी इनमें से एक हैं. अल्लाह से मदद मांगनी. किस्म जो होती है ना, ये मोटी काफ से होती है, आपने छोटी काफ से लिखी हुई है. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलत ना हो जाए. कसम, किस्म, कसम. उर्दू भी लिखनी शुरू कर दें. मंगवा लें आपके लिए उर्दू राइटिंग की बुक्स, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, इरम नोट कर लें. आज का पेपर बहुत आसान लगा. अब मुझे लगता है कि ये जुमला सुन के बहुत सारों को गुस्सा आएगा जिनको मुश्किल लगा है. अपनी तरफ से रूट वर्ड 100% और तर्जमा भी 100% किया है. कल तबीयत बहुत खराब थी जिसकी वजह से सही रिवाज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोज का काम रोज करने की वजह से मुझे उम्मीद थी कि मैं पेपर अच्छा कर लूंगी और मेरी उम्मीद पूरी हुई. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोज का काम रोज करने वालों को टेस्ट मुश्किल नहीं लगता. आज भी अगर आप इस चीज की नियत कर रहे, देखिए आपके पास रोज का काम चार लेसन अ वीक, फिर आज थर्सडे की शाम से करें तो फिर संडे तक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर 4 दिन है. रोज का काम रोज, और वीकडेज का काम वीकेंड्स पे. दो तहें लग गई है. वर्कबुक पूरी आप लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे उनके ऊपर अन करीब एक बम फूटेगा इसका. ये मैं आपको भी बता दूं, जो इस पे तो हम बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन आपको बताती हूँ कि जो काम रोज नहीं करता उसका काम पायल अप हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो गिव अप कर देता है. ठीक है, फिर आप देखिए जब टेस्ट होता है कोई मुश्किल ही नहीं है. जो काम रोज का रोज के, जो घर की सफाई रोज रोज साथ साथ रखते हैं उनका घर हमेशा साफ होता है, और जो नहीं करते उनका सिर्फ उस वक्त साफ होता है जब वो करने वाली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद घर फिर फिकर जाता है. तो ये हमारी अपनी मर्जी है. बहरहाल ये कहते हैं कि वेरी हार्ड टची लेसन. अल्हम्दुलिल्लाह हर लफ्ज दिल पर उतर रहा था. अपनी फीलिंग्स को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है. इस बात पर शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान बनाया और कुरान पढ़ने का इतना अनमोल मौका दिया. हर अच्छा काम नेकी नहीं होता, नेकी वो होती है जो नबियों के तरीकों पर चल के जाए. ये भी मुझे खुशी हुई इन्होंने अगर ये पॉइंट लिया, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट था कल के सबक का. आई रिक्वेस्ट यू टू डियर उस्ताजा जी, प्लीज इंक्रीज आवर तफसीर टाइम 30 मिनट टू 40 मिनट टू आवर मॉर्निंग और इवनिंग विद द आफ्टरनून टुगेदर. जिन कह रही है 30-40 मिनट तफसीर का टाइम बढ़ा दें. जजाकल खैर, इनका नाम बताऊंगी तो आप लड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं बताती. आप लिख के दे दें मुझे जो कहेंगे, मैं बैठने को बड़ी खुशी से तैयार हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो पूरी कर दी अच्छा टेस्ट करने की, मगर यह एहसास है कि और ज्यादा मेहनत की जरूरत है और साथ साथ तर्जमा याद करने की भी जरूरत है. इंशाल्लाह अब ऐसा ही करना है माशाल्लाह. अब ये दो तीन लफ्सफों का कमेंट है, ये लिखा है इन्होंने कि मेरी 9 साल बच्ची ने ये नोट्स लिए हैं. आप में से किसी की बच्ची है इसको पीछे लगा दीजिएगा कल के सबक में. कल का ये मेरा ख्याल है. जी बिल्कुल वही है, इमाम जो कब्र के 3 सवाल, हशर के 5 सवाल, और बहुत अच्छे नोट्स लिए माशाल्लाह. ये कौन सी बच्ची है? अलीजा खान, आपकी बेटी ने लिए. गुड, तो अगले साल के लिए इसका नाम अभी लिखा दें इंशाल्लाह ताला. तो बहरहाल ये आपकी कुछ शेयरिंग्स थी. आप देखिए कि कल के सबक में एक दो चीजें जो जरूरी हैं सिर्फ ऐसे ही गो थ्रू कराने के लिए. कल कसास की बात हुई. कल मैंने आपको तذکرہ किया था कि इस्लामी कानून जब किसी मुल्क में लगते हैं तो वहां कितनी खैर होती है. ये एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में, सुन लीजिए. एक जायजा लिया गया, यूएनओ की रिपोर्ट है ये. सऊदी अरब में कत्ल का रेशियो 1 मिलियन में से 32 है, यानी आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल सऊदी अरब में एक साल में सिर्फ 32 कत्ल हुए. फ्रांस में 32,000, 32,000. कनाडा में 75,000, 75,000. जर्मनी में 42,000, 42,000. अमेरिका में एक साल में 82,000 खवातीन अगवा हुई, यानी उनको किडनैप किया गया. जुराइम को रोकने के लिए खर्च किए जाते हैं, यानी क्राइम्स को रोकने के लिए 56,000 खर्च करते हैं, इसके बावजूद जरायम नहीं रुक होते खत्म। वजह क्या है? कौन सी चीज़ है जो बंदे को गुनाह से रोकती है? तकवा। ठीक है, तो असल चीज़ यह है कि तकवा लोगों में पैदा किया जाए। अब आप देख सकते हैं कि वलकुम फिल कसासी हयात जो है, ये एक इतना खूबसूरत जुमला था कि इस एक किताब जो थे वो अरब लोग नहीं ला सके। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि कल के सबक में जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर वसीयत की बात थी। ये वसीयत की बात सुनकर एक इंसान के दिल में कम से कम इस बात का एहसास तो जरूर भर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक बहकने के लिए नहीं छोड़ता। उसने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ रखा है, और इन सारी चीजों को पढ़ने और सुनने के बाद एक इंसान अपने आप को ये में अल्लाह ताला की सुपरविजन में महसूस करता है, और अल्लाह ताला की गाइडलाइन में जब जिंदगी गुजारी जाती है तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब मैं पढ़ा के जाती हूँ तो मेरे भी दिल पे असर रहता है। तो कल का पूरा सबक लई सल बिर तवल्लु, जिसको आपने भी सुना इस्लाम A2 की रोशनी में, तो मुझे उससे जो बात फिर दोबारा मेरे दिल में वो यही थी कि इस्लाम जो है ना वो अलल टप किसी काम करने का नाम नहीं है, बेसोचे समझे। हर काम के पीछे हिकमत भी है, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि करो। और जो तरतीब हमने कल देखी और सुनी, अगर यही तरतीब हमारे जहनों में रहे तबलीग के दौरान भी, नोट करें ये जुमला बहुत अहम है। आपको इस्लाम मिल गया, आप तो मुसलमान है, बचपन से नमाज रोजा हज जकात का लफ्ज आपके मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए खलत मलत हुआ हुआ है हमारा दीन। लेकिन अगर आज आप किसी को इस्लाम सिखाते हैं, दीन की दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, तो यही फ्रॉम रूट टू ब्रांचेस एंड लीव्स एंड फ्रूट पे जाइए। कभी किसी ऐसे बंदे को जिसके दिल में अभी ला इलाहा इल्लल्लाह ही पुख्ता नहीं हुआ, उसको ऊपर की शाखों के किसी मामले में ना टोकिए। अगर आपके बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं आपने डाली तो नमाज करवाने का फायदा क्या? बस जब हम तबलीग में इतने ज्यादा रंडम हो जाते हैं कि वो लोग जो नमाज भी नहीं पढ़ते, हम उनकी सिगरेट छुड़ाने की फिक्र में लग जाते हैं, हम उनकी नेल पॉलिश के पीछे लग जाते हैं। किसी के अकीदे दिल में 100 बुत बैठे हुए हैं, कहने की बात है, यानी शिर्क उसके दिल में है, कई अकीदे की गंदगियां दिल में, और आप जाके उसकी कीमतों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ना करिए, फायदा ही कोई नहीं होगा। एक शख्स जिसके दिल में शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी ना किसी तरह से वो कोई शरीक बनाए बैठा है, सारी रात भी अगर वो मस्जिद में बैठ के लोगों को पानी पिलाता रहे और खिदमत करता रहे, उसकी नमाजें भी कबूल नहीं है। तो तबलीग में ये नुक्ता जरूर याद रखे कि सबसे पहले लोगों के दिल की मट्टी को नरम करें, हुब्बे इलाही का बीज डालें, इल्म का पानी दें, तदरीजन जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में जड़ पकड़ने लगे तो फिर इबादत की बात करें। फिर इबादत जब पुख्ता होने लगे तो मामलात की बात करें, मामलात में बेहतरी के लिए इखलाकियात की बात करें। चार हिस्से आपके जहन में दीन के वाजे होने चाहिए, लिख ले फिर बोल देती हूँ। जो रूट्स का पार्ट है सारा जो जमीन के अंदर छुपा होता है उसको अकीदा कहते हैं, अकायद। नंबर 1 थिंग जिस पे हमारा इस्लाम है वो अकीदा है। दूसरा हिस्सा हमारे दीन का इबादत है, स्टैम्प, तना। आज बहुत सारे मुसलमान अकीदे और इबादात के फर्क को ही नहीं समझते, फिकी बहसों को अकीदा बना लेते हैं, कोई हाथ ऊपर बांधता कोई नीचे बांधता, कहता मेरा ये अकीदा है। अकीदे का ताल्लुक इबादत से नहीं होता। ये जितनी मुसलमानों में चार फिक्हे हैं और मुख्तलिफ आइमाए कराम के साथ लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो फिकी इख्तलाफात है, तने के ऊपर इख्तलाफ है, जड़ में रूट में कोई इख्तलाफ नहीं। किसी मुसलमान कहलवाने वाले फिरके को आप किस बुनियाद पे परखेंगे? जड़ की बुनियाद पे परखेंगे। आज मुसलमानों में जो मुख्तलिफ सेक्ट्स है ना, उसके अंदर ये दो तरह के इख्तलाफ हैं, समझ लें आपके फायदे को। ये बार बार दोबारा बोल देती हूँ मैं ये बातें, कि कुछ मजहबी अकायद ऐसे हैं जिनके अकीदे में झोल भी वो बहुत पूछते हैं और उनको सजदा तक रवा करते हैं, या उनसे मन्नत मानना, कब्रों पे जाना, ऐसे फिरके को तो आप बिल्कुल एक साइड पे कर दें, एक पैनी भी आप खर्च नहीं कर सकते ऐसी जगह पे, वो आपकी बेकार जाएगी। बाकी रह गई बात, कुछ मस्जिदें हैं वहां रफुल जदैन होता है, कुछ में नहीं होता, कोई ऊंची नमाज पढ़ता है, कोई नीची पढ़ता है, कोई 8 तरावी पढ़ता है, 20 पढ़ता है, ये इबादात का इख्तलाफ है, इट्स कंसिडरेबल। लेकिन जो अकीदे का इख्तलाफ है, जिसमें अब आप नाम में लूं फिर फिरका वारियत बढ़ती है, लेकिन आप देखें खुद को मुसलमान कहने वाले आज कई नामों में बटे हुए, ये शिया सुन्नी ब्रेलवी और फलां हनफी फलां और फलां इस्माइली और फलां, ये क्या नाम है? तो खुद अकल से परखिए कि किसके अकीदे में कम खराबी है। अकीदे की खराबी पे तो नेवर नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इबादात में बर्दाश्त, सब्र करो। सही बात है, ठीक है, तुम मानते जाओ, और उसके बाद मामलात में तो कभी भी किसी में इख्तलाफ नहीं है। चारों स्कूल ऑफ थॉट के साथ इवन बातिल से बातिल मुशरिकाना फिरके भी कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, इख्तलाफात उसमें नहीं होते। ठीक है, तो अकीदे के इख्तलाफ कभी भी गवारा नहीं करना, उसको हमेशा इंशाल्लाह हमने लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से लेके आना है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आखिर में फिर जो चीज़ आ जाती है ना, वो इंसान का उस माशरे में उस माहौल पे एक असर दिखता है, उसी को हम इंशाल्लाह जब देखेंगे कि अल्लाह ने चाहा हमारी ज़िंदगी में ये हो कि ना हो। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मुसलमान सरसब्ज शादाब दरख्त बनेंगे अपने दीन पे अमल करते हुए, तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन सा था दौरे फारूकी में। अबू बकर सिद्दीक का दौर ले लीजिए, शुरू के दौर में मुसलमान चूंकि बिल्कुल एक दरख्त की मानित मुकम्मल इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे थे, अल्लाह की तौफीक से पूरी दुनिया में अमन था। आज हमने दुनिया में दूसरों को जब ये चीजें नहीं दी, तो उन्होंने हमारे ही ऊपर इन चीजों को लाकर हमारा जीना धूबर कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दीन की रूह पे अमल करने वाला बना दे, चेक लिस्ट बना लें अपनी इस इनायतों को, एक एक चीज अपने अंदर डालते जाएं, देखते जाएं, और आप महसूस करेंगे कि जिस चीज का आगाज मन आमन बिल्लाही से हुआ, यानी बिल्कुल दिल, उसका अहतमाम सबर कौन सा हीन अलबास गलबा इस्लाम तक। तो ये तरतीब सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही बेहतर होगा, आगे चलेंगे। मैं चाहूंगी कि अगले सबक की दुआएं आप सब मिलके पढ़िए। जी आप कुछ कुछ जी प्लीज, सॉरी जजाकला, मैं समझ गई। पहला हिस्सा है दीन का अकायद, नो कॉम्प्रोमाइज। अकीदे में तो एक झोल बराबर छोटी चीज पे भी कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। दूसरा हिस्सा होता है इबादात, वर्शिप, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिसमें आज एक बहुत अहम इशू हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा है हमारे दीन का मुआमलात, डीलिंग्स विद अदर्स, हुकूकुल इबाद भी इसको लोग कह सकते हैं, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, हमसायों से, ये सारे मामलात। और चौथा हिस्सा है अखलाकियात, एथिक्स। ठीक है, अकीदे को क्रीड कहते हैं इंग्लिश में, इबादत मामलात को डीलिंग कहते हैं, और ऊपर जो वर्ष इबादत हमारे अखलाकियात, तो उसको एथिक्स कहते हैं। ये चार बुनियादी हिस्से, और जो मैंने आपको आयतुल आयात की तफसीर में बताया था कि सूरत बकरा में चार मजमून की एक चुटिया गुंदी हुई है, ऐसे चार रंग, एक सुरख, पीला, नीला और सबस लगा ले, तो उस छुटिया में कभी हम अकायद की बातें पढ़ते हैं, कभी मामलात की पढ़ते हैं, कभी अखलाकियात की। आज का जो हमारा अगला सबक है, ये पूरे का पूरा जो है ये इबादात और मामलात से मुतल्लिक है। तिलावत करें आप लोग, तो हम आगे चलते हैं। शुरू कीजिए, आउज़ु बिल्लाह, सब एक साथ शुरू करें। सबकी आवाजें नहीं आ रही। सबकी आवाजें नहीं आ रही। ठीक है जी, जजाक अल्लाह खैर। आयत को पूरा करके रुक जाए। चलिए अभी थोड़ी सी मजीद रवानी की जरूरत है आपको, हम चलते हैं। अब पूरा फोकस कीजिए, शुरू में जो आपको खुलासा दूंगी या आपको लिए पूरे सबक की जान है। पहली दफा ये मौजू आ रहा है, इसलिए इसका सुनना और समझना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तफसीर पे जाने से पहले हम आज के सबक का खुलासा करेंगे, मरकजी ख्याल, थीम ऑफ द लेसन। हमने पीछे बात की थी कि दीन इस्लाम के चार बुनियादी हिस्से हैं और सूरत बकरा में इन चारों पे बात होती है गाहे बगाहे। आज की जो आयतें हैं ये हमारी इबादात और मामलात से मुतल्लिक है। शुरू में इबादात की बात है, लेकिन बाद में उसी के अंदर शौहर और बीवी के ताल्लुक के नाते से कुछ बात है। और जिस इबादत का आज हम तज़किरा पढ़ने लगे हैं, इसको उर्दू में रोज़ा और अरबी में सौम कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए रोज़ा क्या है, कैसे है। पहली बात यह है कि सौम रोज़ा इस्लाम के अंदर एक पिलर की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायात से ये बात मिलती है कि नमाज की तरह अगर कोई रोजे का इनकार करे, देखिए एक है रोजा ना रखना या ना रख सकना, ये और बात है। कोई ये कहे कि मैं रोजे को दीन में लाजिम समझता ही नहीं, या आज के दौर में रोजे रखने की जरूरत नहीं, अगर कोई शख्स रोजे का इनकार कर देता है तो वो इस्लाम के दायरे से निकलने लगता है, और अगर मुस्लिम हुकूमत होगी तो उसका दम भी हलाल होगा। ठीक है, इतनी अहम है। फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में रोजा मौजूद है। सलात कहते हैं नमाज को, जिसका तस्करा हमने सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। नमाज सलात मक्की सूरतों में नमाज का जिक्र कसरत से मिलता है, लेकिन मक्की दौर में सौम का रोजे का जिक्र नहीं मिलता, यानी इबादत के तौर पे तज़किरा नहीं मिलता। वजह इसकी क्या है कि मक्का में रहते हुए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। कैसे था, अभी इसकी तफसील सारी खुद ब खुद अपनी जगह पे आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में आते हैं अरब, वहाँ पे लोग दीन इब्राहिमी से इतना दूर निकल चुके थे कि रोज़ा रखने का तसव्वुर उनके दीन से निकल चुका था। अगला जुमला नोट करें, ये छोटे जुमले फिर कहूंगी कि लाइनों में लिखा करें, बाद में आपके लिए याद करने चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये हर नबी ने रोजे रखे, हर शरीयत में रोजे फर्ज थे। ये अलग बात है कि उसका तरीका, उसकी लेंथ, स्टाइल बदलता रहा। कहते हैं कि सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में रोजे फर्ज हुए और उनकी कौम जो थी वो दो या तीन रोजे रखती थी। अरबों में भी चूंकि हजरत इस्माइल की तरफ से दीन इब्राहिमी आया था, लेकिन रोजा अमूमन इंसान के उस पर बोझल पड़ता है, तो जब दीन में डाल देते हैं। इन्होंने भी यही किया, खुद रोजा नहीं रखते थे लेकिन अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे। जी लिखिए फिर बताती हूँ। वजह क्या थी कि अक्सर अरबों का पेशा लूटमार था, डाकू थे, गारत करी थी, कबीलों में बटे हुए थे, वक्फे वक्फे से उनके बीच में जंगें होती रहती थी, और जंग के लिए इनको घोड़ों की जरूरत पड़ती थी क्योंकि घोड़ा तेजी से चलता है, भागता है, भाग के उसकी पूंछ पे चढ़ जाते हैं, रात को भी घोड़ा चलने को तैयार है। ऊंट तेज रफ्तार जानवर नहीं है और घोड़े के मुकाबले में अपना रुख भी जल्दी नहीं फेरता। चुनाचे इनकी जरूरत थी कि ऊंट की जगह घोड़े को इस्तेमाल करें। अब घोड़े के अंदर इतनी खूबियां तो मौजूद हैं, लेकिन वहां साथ ही साथ घोड़े के बारे में अगर आप कभी जानते हो कि ये बड़ा ही नाजुक मिजाज जानवर है, तुंक मिजाज जिसको आप उर्दू में कह लें, गुस्से में भी जल्दी आता है, अपने ही मालिक को पिछाड़ देता है, और बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता। लिहाजा अरब लोग क्या करते थे कि घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए, तरबियत के लिए या सुधाने के लिए उनसे मुशक्कत करवाते और इनको भूखा रखते। इनके मुंह पर एक वो छिक्कू सा नहीं होता तोबड़ा, वो डाल देते थे। जब वो डालते तो वो खाना नहीं खा सकता, ताकि घोड़ा ना खा सके, उस अमल को वो सौम कहते थे। और जिस घोड़े पर ये अमल करते थे उसको साइम कहते थे, असाइम जैसे रोजा रखने वाला। इससे घोड़ों को भूख प्यास बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती। और ऐसा क्यों करते कि लड़ाई के दौरान अगर घोड़े को भूख लग गई और वो बैठ गया तो जंग गई ना, तो गोया कि इससे वो उनको सख्त जान करते थे, और इस तरह फिर सवार की जिंदगी को खतरा नहीं होता था। ठीक है, एक बात, एक तो था खाने से उनको दूर रखते थे, दूसरा क्या करते थे कि अरब की गर्मी का उनको आदी करते थे। घोड़ा असल में अरब मुल्कों में रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन इनको अरब की गर्मी से का यूज टू करने के लिए गर्मियों और लू में धूप में छोड़ देते थे। खुद भी जाहिर खड़ा होना पड़ता था, तो अपने सर के ऊपर कपड़े बांध लेते थे, जिस्म पे कपड़े लपेट लेते थे ताकि हमें गर्मी ना लगे, लेकिन घोड़ों का मुंह धूप की तरफ, सूरज की तरफ कर देते थे, ताकि खूब गर्म हवाएं इनको पड़े और भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के आदी हो जाएं। और इस तरह से जब किसी मुहिम में उनको गर्मी सर्दी भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़े तो घोड़े कर सकें। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त अरबों में रोजे का तसव्वुर। इतनी बात वाज़ हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए। मक्का में तो यही कुछ था, ठीक है, वहां कुफारे मक्का थे और उन्होंने रोजे की ये कैफियत बना रखी थी। जब मदीना में आए तो मदीना के हालात थोड़े से फर्क थे, यहाँ यहूद मौजूद थे और यहूद के यहाँ रोजा रखने का रिवाज था, क्योंकि वो ये अपने नबियों के नक्शे कदम पे चल रहे थे। वो क्या करते थे, 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, आशूरा का रोजा कहते हैं जिसको आज भी। क्यों? क्योंकि उस दिन बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली थी। पीछे याद, वइज़ फरकना बिकुमुल बहर फअंजैनाकुम, ठीक है, तो इस खुशी में ये रोजा रखते थे कि हम उस दिन फिरौन से निजात पा चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इब्तदा में हर महीने में 3 रोजे रखने का हुक्म दिया, जिनको अय्याम-ए-20 के रोजे कहते हैं। बा या दुआद, भैया सफेद को कहते हैं ना, बैजा अंडे को कहते हैं, वही लफ्ज है। और ये कौन से दिन होते हैं, चांद की 13, 14 और 15। कौन से दिन होते हैं चांद के नाते से, ये फुल मून, बदर, खूब सफेद। और इसीलिए इनको अय्याम-ए-20 कहते हैं कि इन दिनों की रातें भी रोशन होती हैं फुल मून की वजह से। ठीक है, इन 3 दिनों में रोजे रखते थे। आज के सबक में हम देखेंगे इस रुकू की इब्तदाई 2 आयात में इसी की तरफ इशारा मिलता है। चूंकि रोजा नफ्स पे बोझल पड़ता है, अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज करने में तदरीज ग्रेजुअलिटी का एहतमाम किया। शुरू में लोग 3 रोजे रखते रहे, 3 रोजों की आदत हो गई, होते होते फिर अगली आयतें उतरी, या मैं भी तफसीर में आपको लिखाऊंगी तो आप खुद भी समझ जाएंगे ये कहां बात हुई। सेकंड स्टेप रोजों के बारे में इस्लाम के अंदर क्या गुजरा कि रोजा फर्ज कर दिया गया, यानी 30 रोजे, लेकिन ऑप्शन दे दी, और वो क्या थी, चाहो खुद रोजा रख लो चाहे किसी को रखवा दो। समझ गए? अब क्या हुआ, जो गरीब गुरबा थे वो तो खुद ही रखते थे, सख्त जान भी होते हैं ऐसे लोग, और जो हम जैसे बिगड़े हुए नरम मिजाज दौलतमंद लोग होते हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने गुलामों को रखाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कान में बात पड़ गई ना, यानी बीच में एक दौर ऐसा रोजे की फर्जियत में गुजरा कि रोजा फर्ज था, लेकिन चाहो तो रोजा रख लो और चाहो तो तुम उसका कफारा दे दो। तो कुछ लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिया। होते होते क्या हुआ कि लोग जब थोड़ा सा यूज्ड हो गए तो हतमी तौर पे आ गया, फमन शहिद मिनकुम अश्शहरा फलयसुम, आज के सबक में आ रही है ये आयत, कि अब तुम में से जो भी इस महीने में हाजिर हो वो रोजे रखे। ठीक है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत रमजान के बारे में क्या है? साल में एक महीना, जिसको रमजान का महीना कहते हैं। लफ्ज रमजान को भी समझ लीजिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने जो ये 12 महीने रखे हैं ना, सूरह तौबा में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन्ना इद्दत शहूर इंद अल्लाह इस्ना तश्र शहरा, लेकिन यहाँ इसका इशारा जरूरी है वरना बात समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने रमजान के जो रोजे हैं ये रमजान में ही फर्ज किए, महीने 12 हैं। जैसे आज मैं और आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। इसी तरह ये महीने कौन से होते हैं? ये सूरज के साथ चलते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं जी, बोलिए। सोलर यानी सूरज के साथ शमसी महीने। जो महीने चांद के साथ चलते हैं उनको क्या कहते हैं? कमरी, कमर, सुनर और लूनर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझिए फर्क को। 12 महीने जिसमें मोहर सॉरी रमजान नौवां महीना बनता है। पहला महीना कौन सा है? किसको 12 महीने आते हैं, जरा पढ़े मिलके। मेरा ख्याल था आपको सिर्फ रमजान और जिलहज ही आएगा, हाँ ठीक है। अब ये 12 महीने थे, ठीक है। ये जो जनवरी फरवरी है ना, आपको पता है इसके पीछे क्या हकीकत है? ये इनके बुतों के नाम पे है। जूना की इबादत ये जून में करते हैं, बाकियों की भी हिस्ट्री सुननी है तो सुन लीजिएगा बाद में। ये जो मंडे संडे ट्यूसडे है ना, मंडे मूनडे संडे संडे, मंडे को ये मून की पूजा करते थे, सूरज की पूजा, चांद की पूजा, मंडे को मून की, संडे को सन की, इसी तरह इनकी देवियों के ये नाम है। ये जितने नाम आज आपको वेस्टर्न कल्चर में दिखते हैं, जो अब हमारी मासियों के भी जुबान पे हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ की तो बात ही ना करें, वो भी कहती हैं भाजी संडे को नहीं आऊंगी, है मंडे को तबीयत खराब हो जाएगी, ट्यूसडे को सोचूंगी और वेडनेसडे को अगर दिल चाह तो आ जाऊंगी। तो ये जो नाम है, रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? रौ मीम दुआद रमदा, इसका मानी होता है पांव जलना। रमजान का महीना जो है, जब शुरू हुए थे दुनिया के गिनती के दिन, तो गर्मियों में आता था। अब यहाँ हिकमतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुख्तसिर से बात मुख्तसिर करूं, क्योंकि जब आप रमजान की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी चीजें आएंगी। अल्लाह ताला ने इसको कमरी कैलेंडर के साथ रखा। और एक और बात नोट कर लीजिए कि कमरी, और चलो मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ, ये जो ये मतलब चांद के साथ चलता है ना कैलेंडर, और एक सूरज के साथ चलता है, जनवरी फरवरी, और दूसरे में दिनों का फर्क होता है। इसमें कितने महीने में, एक साल में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी में 365। जो चांद के साथ होता है ना, उसमें 355 होते हैं, ठीक है। फर्क किस बात का है? अभी देखें, जनवरी 30, फरवरी 28, मार्च 31। आप ये देखें, मैंने यहां से याद किया, मैं मुझे कभी नहीं याद होते, पता नहीं किसने बचपन में सिखाया था, आपको भी सिखाया होगा। ये जो ऊपर वाली कोनी है ये 31 है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये दो मुसलसल हैं जिसमें 31 होते हैं, बाकी यानी वो 31 है, इसमें 31 और 30 हो जाते हैं ना, लेकिन चांद में 29 या 30 होते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या हिकमतें हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे प्यार आता है। एक सूरत क्या थी कि अल्लाह सुबहान ताला रमजान को एक वक्त पे फिक्स करते थे। जैसे आप देखिए कि मसलन जनवरी है, हर साल जनवरी में सर्दी ही होती है ना मोस्टली हमारे इलाके में, जनवरी फरवरी मार्च सर्दियां होती हैं। चले जून जुलाई अगस्त, पाकिस्तान इंडिया में रहने वालों के जहन में जून के साथ क्या लफ्ज आता है? गर्मी, ठीक है। अब होता क्या है कि रमजान मूव होता है। अगर आप देखें कि हर एक साल में शमसी और कमरी कैलेंडर में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है, ये आप सबको भी पता है, हर साल रमजान 10 दिन बाद शुरू होता है हमारे, उसके पहले शुरू हो या बाद में जो भी है, कहने का मतलब ये कि एक साल में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि एक बंदा अगर 33 साल की, उसको 33 ईयर्स के रोजे रखेगा ना, तो उसको पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर दिन रोजा रखने का मौका मिल जाएगा। एक बात, अल्लाह सुबहाना ताला ने एक नेचुरल बांट रखी थी कि रमजान इस तरीके से आए कि घूम घूम के पूरे साल में बंदा रोजा रख ले, नंबर एक। दूसरी बात है कि दीन सिर्फ अरब के लिए नहीं आया था, दीन अगर सऊदी अरब में, अमेरिका में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी है। और आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन हकीकत है कि दुनिया के इस हिस्से में जब सर्दियां होती है ना, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका में, कनाडा में, इधर यूरोप में, जनवरी फरवरी बहुत सर्दियों के महीने हैं, दिसंबर, ऑस्ट्रेलिया में पीक गर्मी होती है उन दिनों में, इधर क्रिसमस बर्फबारी में आती है, उधर क्रिसमस में लू चल रही होती है। अब दुनिया के मुख्तलिफ हितों में जो लोग रहते हैं, अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि वो हर मौसम में अल्लाह की इबादत कर सके, कभी की गर्मी के रोजे, कभी सर्दी के रोजे, कभी लंबे रोजे, कभी छोटे रोजे। तो अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से जोड़ा कि ये रोटेट करे। अरब लोग जो कह लें अपनी जुबान में कि अपने दौर के बिगड़े हुए मुसलमान थे, उनको ये मुश्किल लगता था, वो चाहते थे कि बस एक फिट कर दें, रमजान हमेशा एक ही महीने में आए और हज का महीना एक ही आए, क्योंकि उनके लिए दीन जो था ना एक रस्म बन चुका था, इबादत नहीं रहा था। वो हज को हमेशा सर्दियों में चाहते थे ताकि ज्यादा लोग आए, हमारी ज्यादा बिक्री हो, लिहाजा वो हर 3 साल के बाद एक महीना नसी के नाम पे बढ़ा देते थे। अभी ना लिखिए, सिर्फ एंजॉय कर लें, ये हम सूरत बकरा तौबा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इन्नमा नसीउ ज़ियादतु मिनल कुफ्र, कि ये जो अल्लाह के फितरत के निजाम को घटाते बढ़ाते हो ना, कि इसको इधर से उधर कर दो, उधर से उधर, बड़ा कुछ करते थे। जैसे बिल्कुल इसकी मिसाल जो समझे कि जनवरी फरवरी मार्च हमेशा इसी तरतीब से आता है ना, ठीक है। तो इनका मसला क्या था कि जब भी कभी हुरमत का कोई महीना बीच में आ जाता था, आप पढ़ेंगे आगे जब, हाँ वही बताऊंगी, 4 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़ाई झगड़ा मना होता है। अब इनका दिल, एक लड़ाई चल रही थी, अब उसमें 3 महीने मुसलसल भी आते हैं, तो जब ये लड़ना चाहते थे ना, तो कहते थे इस दफा जी का जो है ना वो पीछे चला गया और जिलहज आगे आ गया, और इस तरह। या ऐसे कि मैं आपसे कहूँ कि आज कौन सा महीना है, अक्टूबर के एंड है ना, आज वाले दिन 31 है, आज अक्टूबर है, इसके अगला महीना कौन सा है और उससे अगला कौन सा है। तो हम कहें कि अच्छा जी देखिए ऐसा करते हैं कि इस साल ये अक्टूबर के बाद जो अगला ना ये दिसंबर है, और जब ये खत्म होगा तो जो असल में दिसंबर है उसको नवंबर बना लेंगे। तुक नहीं बनती। इस तरह की बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियां की थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने रमजान के महीने के नाते से इनके बहुत सारे गलत तौर तरीकों को तोड़ा। किस तरह से तोड़ा, आइए अब हम इसको देखते हैं कि इन आयतों के साथ साथ चलते हुए हमें इसमें से अपने लिए क्या सबक मिलता है। लेकिन अभी की बात में आपको जो क्या है कि रमजान के रोजे ग्रेजुअली फर्ज हुए, अल्लाह ताला ने पहले जहन साजी की, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको रोजे रखवाए। दूसरी बात यह कि रोजे मौसम बदल बदल के आते हैं, कभी गर्मी के रोजे, कभी सर्दी के रोजे, ताकि अल्लाह ताला को बंदे दिखा दें कि हम हर मौसम में तेरी इबादत करेंगे। जो नेक बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्लाह हर मौसम में, हर हाल में तेरी इबादत करनी है, कोई महीना कोई मौसम ऐसा ना रह जाए कि जो तेरी इबादत से खाली हो। और जिनके ईमान कच्चे हैं वो कहेंगे कि अल्लाह करे कि बस हमेशा रोजे सर्दियों में ही आए। आप सोचें कि रोजे अगर सिर्फ सर्दियों में ही आने हैं ना, तो फिर आपको उससे फायदा क्या होगा कुछ। आपको पता है कि आज तो साइंस ने इतना ज्यादा हमें रोजों का और इन बाकी चीजों का फर्क बता दिया, अपनी हमारे जिस्म को कितना फायदा है, गर्मियों के रोजों में कितनी खैर है, और सर्दियों के, और लंबे रोजे और छोटे रोजे क्या है, इसकी बेशुमार बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब रमजान आएगा तो आप लोगों के कानों तक ये बातें टकराएंगे, आपको एक पूरी बुक भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इन आयतों तक रहें, और खुलासे के अंदाज में पहले करेंगे क्योंकि लेसन बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमारे सामने आएंगी, इंशाल्लाह इसको एक स्ट्रेच में करके बाद में बाकी चीजों को इकट्ठा लेके चलेंगे। एक आधी बात नोट कर लीजिए कि यहां रोजे के काम पर मुश्तमिल ये रुकू 6 आयतों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और पूरे कुरान में नमाज का तذکرہ तो कई बार है, रोजे का इसके अलावा कहीं नहीं। यानी अगर आज जो साथी छुट्टी पे है ना, वो बाद में कह देना कि पूरे कुरान में रोजे की कोई बात ही नहीं आई, तो वो कह सकते हैं। यहां से देखिए कि एक दिन का सबक मिस होता है तो कितनी बड़ी बात है। इजमाली जिक्र मिल सकता है कहीं ना कहीं इशारतन, लेकिन अहकाम और ऐसी चीजों पे कुछ नहीं मिलता। और इस जगह यहाँ ये भी पता चलता है कि एक ही जगह सारी बात करके अल्लाह ताला ने उसकी हिकमत को बता दिया। आइए अब हम जरा इस आयतों के साथ साथ चलते हैं। आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, किसको पुकारा? मक्का और मदीना वालों को, हम सबको। कौन है आमनू? आम ईमान लाने वाला, जो ईमान ले आया, जो मन में आ गया, जिसको अल्लाह ने ईमान दे दिया। आमिना, मोमिना, हम सब अपना नाम कुछ भी रखें, लेकिन ये हुक्म हम सबको है, औरतों को भी है, मर्दों को भी है। क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया। पीछे भी बात हुई थी कि कुतिबा का लफ्जी माना क्या होता है? लिखना। लेकिन जब इसके आगे अला आ जाता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो इसका मानी क्या? फुरीजा, फर्ज किया गया। ए ईमान वालो, हरफे निदा पुकारा गया कि तुम जो ईमान ले आए हो, जो जुबान से अल्लाह की तौहीद का इकरार कर चुके हो, दिल से अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए अब तैयार हो। पहले अपने आप से पूछिए, तैयार हो? अल्लाह को मान चुकी हो, अब अल्लाह की सुनना चाहती हो? तो फिर सुनने को तैयार रहे। क्या? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, साथ ही तसल्ली दे दी, जैसे तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे। क्योंकि बाज दफा जब पाबंदियां लगती हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हमारे ऊपर ही ये मुश्किल आ गई, तो कहा तुम पे ही नहीं आई, तुमसे पहलों पे भी आई थी। बाज लोग क्या कहते हैं, हाय मुसलमान ना ही होते तो रोजा ना रखना पड़ता। तो अल्लाह कहते हैं, तुम किसी भी इल्हामी मजहब में हो, अगर वो अपनी असल शक्ल के साथ दुनिया में मौजूद होता, तो तुम्हें उसमें रोजे रखने पड़ते। ठीक है, तो क्या पता चला कि रोजा रखना पड़ेगा तुम्हें भी, तुमसे पहलों को भी। क्यों रखो? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है, उसको समझो। पहली बात नोट कीजिए इस आयत के नाते से, कि सन 2 हिजरी में बदर की जंग से पहले रोजा फर्ज हो गया था। ठीक है, 13 साल मक्का में रोजा असल शक्ल में नहीं रहा, बस एक हल्का फुल्का 3 रोजे और नफली रोजों का तस्करा था। लेकिन आज जो रोजा हमारे पास है, जिसकी शक्ल हम देखते हैं, ये बदर से पहले फर्ज हुआ था। दूसरी बात यह है कि रोजा कहते किसको है, ये भी तो एक सवाल आता है ना। तो लिख लीजिए, सुबह सादिक से लेकर, यानी बिल्कुल सूरज निकलने से पहले, जो फजर की नमाज का इब्तदाई वक्त है, तब से लेके गरूबे आफ्ताब तक, यानी सन राइज से कुछ वक्त पहले से लेकर सनसेट तक खाने पीने और शौहर बीवी के ताल्लुक से रुकने का नाम रोजा है। रोजे में बहुत सारे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। अरब लोग कहते हैं सामुल फरस, घोड़ा चारे से रुक गया, यानी रोजा रखना क्या है, इसके अंदर रुकने का मानी पाया जाता है, किसी चीज से रुकना या उसको छोड़ देना, किसी चीज से पीछे कर देना। ठीक है, यहां देखिए कुतिब अलैकुम सियाम में ये नहीं बताया गया कि रमजान में फर्ज किया गया। पूरे कुरान में एक जगह भी आपको ये नहीं मिलेगा कि रोजे रमजान में रखो। ये कहां पता चलता है? हदीस में। तो ये हुज्जियत हदीस है। जो लोग हदीस को नहीं मानते, उनको कहिए कि आप रोजे मत रखिए, और वो नहीं रखते होंगे, मुश्किल इबादत है इसलिए। ठीक है, हदीस में ये हुक्म है, कुरान में ये नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लम की उम्मत तक हर दौर में रोजा फर्ज रहा, और रोजे के अंदर इंसान को अल्लाह ताला जो रूह देते हैं, वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। इस तकवा को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर कभी आज के बाद रोजा आपको बुरा नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। और मुश्किल भी लगे, आप देखिए कि हम साल में 11 महीने किसके तकाजे पूरे करते हैं? जिस्म के। ठीक है, खाना पीना जागना सेक्स, जिस्म के तकाजे हैं ना। नतीजा क्या होता है कि जब हम जिस्म के तकाजे पूरे करते हैं ना, तो हमारी रूह इग्नोर हो जाती है। बात वैसे, जब जिस्म को बहुत पेम्पर करते हैं ना, तो नफ्स मोटा होता है। आप खुद देख लें, आप खाना छोड़ दें, थोड़ी दिन के बाद आपको खाना भूख ही नहीं लगेगी। जो चीज आप खाते नहीं, लोग कहते हैं हाय कैसे सबर करते हैं, आपको पता दिल ही नहीं करता, सेल्फ कंट्रोल आता है। और आप खाना, नींद और भूख, यानी खाना पीना और भूख, नींद जितनी बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक गुब्बारा है ना, आप उसमें जितनी पानी हवा भरते जाए ना, वो फूलता जाएगा। यही हाल हमारी हमारे जिस्म का है। हम जो काम जितना ज्यादा करते जाते हैं वो करना आसान है। इसी तरह देखे जो लोग काम नहीं करते, उनको यहां से चीज उठा के वहां रखनी तकलीफ लगती है। हाय कितना मुश्किल है। और जो आदी है वो कहते हैं पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, कट 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 5 मिनट में वो सब कुछ कर लेते हैं। तो इंसान के जिस्म की आदत क्या है कि उसको जितना नरम बना लो, सहल बना लो, हर वक्त अपना हाल ही पूछते रहो, तो जुबान पे उठते एक ही जुमला होगा, मेरी तबीयत खराब है, आज सर बहुत जल है, आज सर में दर्द है, आज नींद नहीं आई, आज दिमाग में दर्द है, कुछ है। ये सिर्फ नासंदा है और कुछ नहीं है। अगर वही छिपकली नजर आ जाए तो उसी बिस्तर से बंदा यूं उछल के निकलेगा कि याद भी नहीं रहेगा कि मेरे पाँव में दर्द था, कि सर में दर्द था, कि कमर में। सच्ची बात है, हम अपने नफ्स को 11 महीने पेम्पर करते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारी रूह भूखी रह जाती है। जिस्म और रूह का फर्क थोड़ा सा समझिए, रमजान के नाते से तो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अब देखिए कि आम दिनों में जबकि रमजान नहीं होता तो ज्यादा अहमियत दिन की होती है, रात इतनी अहम नहीं होती। काम भी दिन को होते हैं, खाते पीते भी दिन को है, घूमना फिरना भी दिन को है, जो भी करते हैं दिन को करते हैं, और अमूमन रात होती है तो फिर उसमें या फिर इंजॉयमेंट होती है या फिर सो जाते हैं। यही होता है ना, फन के नाम पे चीजें देख लेते हैं कुछ लोग, लिहाजा रात दबी रहती है। अब रमजान को देखिए, रमजान में दिन से ज्यादा रात की अहमियत बन जाती है। पहली बात है कि रातों को उठ उठ के टाइम देखते हैं कि सहरी का टाइम ही ना चला जाए। आम दिनों में रात को खाना अच्छा ही नहीं लगता, दिल ही नहीं करता, और सहरियों में आधी आधी रात को बच्चों से उठ के छुप छुप के खा रहे होते हैं। वो बच्चे भी उठ के कहते हैं अच्छा आप हमसे छुप के खा रहे थे। याद है बचपन में हम सब भी यही कहते थे, जब हमें सुला के आप खाना खाते हैं है? फिर इबादत भी रात को होती है। फिर चूंकि गर्म मुल्कों में जैसे अरब मुल्कों में देखिए तो अमूमन फिर दुकानें भी रातों को ही खुलती हैं, कि दिन में गर्मी बहुत है, शिद्दत बहुत है। अब समझिए रात क्या है, अंधेरी, जुल्मानी। जुल्म क्या, अंधेरे को कहते हैं अरबी में ब्लैक डार्क। दिन क्या है, नौरानी। आप कुरान पाक में इसकी दलील पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह 29वें तीसरे बारे में, सूरत नूह में आता है कि वजअलनल कमर नूरन। कमर क्या है, नूर, और सूरज क्या है, नार। अब आपको बात थोड़ी मुश्किल है, समझ आएगी कि नहीं आएगी मुझे कोई यकीन नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस लफ्ज के अंदर लेके जाना चाहती हूँ कि जिस तरह रमजान में हम दिन से ज्यादा रात की फिक्र करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह रमजान में हम अपने जिस्म के दो हिस्सों में से अंदर के हिस्से की ज्यादा फिक्र करते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको ही डिस्कवर कर दूं, जिन्होंने दौरे कुरान किया था, इस साल इंट्रोडक्टरी सेशन में बात हुई थी, पिछले साल जब हम नहीं इसी साल किया ना इंसान के बारे में बात। हमारे वजूद के दो हिस्से हैं, एक जाहरी है जो इस वक्त मैं आपका और आप मेरा देख रहे हैं, इसको आप नूरानी वजूद कह लें, नजर आने वाला वजूद, आंखें, कान, हाथ, बाल। एक हमारे अंदर का वजूद है जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। इन दोनों को खाने की जरूरत होती है। अल्लाह सुबहाना ताला ने जो फितरी बांट रखी है ना, वो क्या है कि हमारी रूह हाकिम हो और हमारा ये जिस्म, आंखें, कान, हाथ, ये स्लेव हो, ये गुलाम हो, नेचुरल बांट जाए। अंदर को हुक्मरान होना है, बाहर को महकूम होना है। ठीक है, इतनी बात वाजे है। रूह डोमिनेंट हो, उसके तकाजे पूरे किए जाएं और जिस्म को दबाया जाए। जिस्म बना है मिट्टी से, आदम को मिट्टी से बनाया, आज हम जो खाना खाते हैं मिट्टी से बनता है, मिट्टी से निकलता है। इस जिस्म को मिट्टी वाली चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसको दुनिया की चीजें अच्छी लगती हैं, खाओ पियो, गाजर, मूली, प्याज, आलू, चिकन, हर वक्त इस जिस्म का दिल करता है कुछ खाए, कुछ आराम करें। इसके बरक्स जो हमारे अंदर रूह है वो कहां से आई, फनफख्तु फीहि मिन रूही, सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि आदम का पुतला जब मैंने बना दिया तो फिर उसमें मैंने अपनी रूह डाली। ठीक, हमारी रूह अल्लाह की तरफ से भेजी गई, ये आसमान से आई, समझ लें। अब इसको क्या चाहिए होता है, आसमान, और वो क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम, अल्लाह की याद है। जिस्म को खाना खा के जो खुशी मिलती है ना, रूह को इबादत करके वो खुशी मिलती है। जब फितरी तौर पे एक इंसान सही सालम होता है ना, तो वो रूह के तकाजे ज्यादा पूरे करता है। जिस्म के तकाजों में मोमिन इतना नहीं उलझता। हर वक्त यही क्वेश्चन नहीं होता आज क्या खाएंगे, बल्कि आज नहीं, इसके अगले वक्त में क्या खाएंगे, फिर चाय के साथ शाम को क्या पियेंगे, फिर शाम की चाय के बाद डिनर, फिर रात 12 बजे के स्नैक्स क्या होंगे, फिर मिड नाइट डिनर क्या होगा। ये जो होता है ना, ये जिस्म को पेम्पर करने वाली बातें हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी रूह गालिब रहे और जिस्म दबा रहे। जब ये होगा ना, तो वो नफ्से मुतमईन है। या तो हन नफ्सुल मुतमईन इर्जीला रब्बी की राधियत मर्दिया। बात लंबी हो जाती है, लेकिन मफहूम एक दफा समझ ले, कुरान में 20 बार ये बात आपके काम आएगी। जब हम आम दिनों में हर वक्त खाते पीते सेक्स और अपनी इंटीमेसीज और इन दुनिया की चीजों में रहते हैं ना, तो हमारी रूह अंदर मुर्दा होने लगती है। इसीलिए काफिर के अंदर बड़े अंधेरे होते हैं। जाहिर काफिर बड़ा खूबसूरत, ग्लैमरस, पंप एंड शो, डांसिंग फ्लोर, दिस दैट दिस, लेकिन रात को बिस्तर पे आता है तो ट्रैंक्लाइजर खा के सोता है। मोमिन की जिंदगी से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बाजार कोई ग्लैमर नहीं, कोई उसके इर्द गिर्द आपको कुछ अकाचौन हीरे मोती चांदी सोने नहीं दिखेंगे, लेकिन उसका अंदर चमक रहा होता है। और असल चीज अल्लाह ने अंदर बनाया है। बिल्कुल आप इसको यूं समझे कि जैसे कोई आपको गिफ्ट मिलता है, बड़ी खूबसूरत सी डिबिया है, आप कहते हो वो इतनी प्यारी डिबिया, दिखाएं जरा आप अपनी डिबिया, ही रहा छोटी वो सुरह डिबिया दे। अब आप देखिए कि आपको अगर एक छोटी सी डिबिया मिलती है, बड़ी खूबसूरत, और अभी तो आपको जो दिखा देंगे वो ऐसी ही है ना, लेकिन सजी हुई संवरी हुई, उस पर कवर चढ़ा हुआ है, रैपिंग पेपर है, फूल लगा हुआ है, रिबन लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है। अब क्या होगा कि आप होते हैं, आप कहते हैं हाय मैं तो इसकी पैकिंग कभी नहीं खत्म करूंगी, बस ये देखिए ये डिबिया, अब इस वक्त तो ये ओरिजिनल शक्ल की डिबिया है ना, अब आपको किसी ने गिफ्ट में दी, फिर भी आप कहते हैं वाह कितनी अच्छी है, रेड कलर है, इसमें शाइन है, वो है, हो सकता है इस पे रैपिंग पेपर है, आप इसमें उलझे हुए हैं। अब आप इसको कहते हैं नहीं मैंने नहीं खोलना, खोला तो खराब हो जाएगा, कई दफा होता है ना ऐसा, लेकिन सस्पेंस तो होता है कि अंदर क्या है। जब आप कुछ देर रखते हैं, फिर आप कहते हैं चलो खोलूं, फिर आप एक एक करके खोलते हैं, एक एक करते हैं, आप कहते हैं चलो इसका बॉक्स खोलूं, फिर एक डब्बा खोला, कवर खोला, करते कराते आखिर में जब अंदर से कोई चीज निकलती है, तो वो क्या है, कोई चमकती हुई चीज। मतलब जैसे ये देखिए, अब ये छोटी सी एक चीज है ना, अब ये जैसी भी है जो भी है, आपके लिए असल कीमत किस चीज की आ गई, इसकी। अब मैंने उसमें से इसको निकाल दिया, इस मिरर को निकाल के इसको मैंने रख लिया, अब इस डिबिया के साथ क्या होना है, एक दो चार दफा मेरे पास पड़ी रहेगी, अगर इसको मैं इसी में रखूंगी, जो ही मैंने इसको यूज किया ये डिबिया इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, ये है इंसान की हकीकत। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया था ना, तो असल चीज रूह थी। ये मोती या अंगूठी कह लें या मिरर जो है ना, ये इंसान की रूह है, ये दुनिया में भेजी जाती है। ये जो कपड़े मैंने और आपने पहने हुए ना, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को ब्राउन, किसी को व्हाइट, किसी को पिंपल्स वाला, किसी के चेहरे पे बाल है, किसी को अल्लाह ने बिल्कुल स्पॉट फ्री किया, ये असल में ये बाहर का बॉक्स है। किसी को एक रंग में कवर में डाल दिया, ये हो गया। दुनिया में इंसान इस सूरत में आया हुआ है, जैसे ये डिबिया हम देख, बाहर बाहर डिबिया दिख रही है, लेकिन असल में अंदर मोती है। अल्लाह ताला ने मौत की सूरत में हमारा ये मोती उठाना है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजी, चल मेरी तरफ आ, ये रूह अल्लाह के पास चली जाती, कल सुना था ना हमने, ठीक है। और ये जिस्म का जो बुत रह जाता है ना खाली, अब इसको क्या करें, इसको जाके हम मट्टी में डंप कर देते हैं। जब हम मरते हैं ना, तो हमारा ये जिस्म का बुत कब्र के अंदर जाता है, किसी का जल जाता है, कोई पानी में डूब गया, कीड़े खा गए, या मट्टी में दबा दिए, ये चला गया, असल कीमत इसकी है। हमारे जिस्म के अंदर जो स्पिरिट है ना, जिसको आप कहते हैं मैं खुश हूं, आप कहते हैं मैं खुश हूं, वो कौन खुश है, ये आपका जिस्म खुश है, नहीं, आपकी रूह खुश है। तो इस रूह को गालिब रखने के लिए रमजान के रोजे रखवाए जाते हैं, कि तुम सारा साल खा पी के अपने इसको मोटा कर रहे हो। कभी आपने ये देखा कि अंदर से चीज बड़ी छोटी निकलती है, पैकिंग इतनी बड़ी होती है, ऐसे ही होता है ना, कहीं आपने मूविंग करनी हो, दूसरे शहर के मुल्क में जाना, तो आप फिर पैकिंग्स निकाल के फेंकते हैं, क्यों, कहते हैं एक तो जगह बहुत ले रहा है, वजन बहुत है, और अंदर से निकालनी तो ये चीज है ना, इसको लेके मैं छोटी सी पाउच में डाल के रख लेती हूँ। मौत की सूरत में भी यही होगा। आज हमारे जिस्म खा खा के मोटे हुए हैं, सारा वक्त हमें इस जाहिर की फिक्र है। कैसी लग रही? पार्लर्स किसका नाम है? किसको एंटरटेन कर रहे हैं पार्लर्स? इस जिस्म को। रेस्टोरेंट्स किसको पेम्पर कर रहे हैं? हमारे बुटीक्स, बताइए, जिम्स, बाजार, ग्रोसरी स्टोर्स, पूरे शहर के स्टोर्स को जरा जहन में लाइए। और प्लेसेस, फन प्लेक्स, खाने पीने, जिधर आप एंजॉय, किसको एंटरटेन करते हैं? इसको करते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम इसकी फिक्र करो। लिहाजा आदत डालने के लिए साल में एक दफा इंसान को रोजे की हालत में रखा कि जिसमें हलाल काम भी नहीं कर सकते, हराम नहीं कुछ और करना, हलाल भी नहीं कर सकते। खाना पीना हलाल है जरूरत की हद तक, रमजान में का नहीं। फर्ज रुक जाओ लकुम तत्तकुन। बचना चाहते हो तो फिर तुम आज हलाल से रुको। शोहर बीवी का ताल्लुक जायज है, रोजे की हालत में उसको कहा कि नहीं करो। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए। जब हम अपनी रूह को गालिब करेंगे ना, तो जिस्म फिर दबेगा। रोजे की हालत में एक आजिजी आती है अंदर की, नहीं? खास तौर पे इफ्तारी से कुछ पहले, ना भूख ना प्यास, बस नकाहत, कमजोरी। अल्लाह क्या चाहता है कि जिस्म के ऊपर गलबा हमारी रूह का हो। आप इसको यूं समझे कि घर में एक मेड होती है ना और एक मालकन है। नेचुरल चीज क्या है कि मालकन का अपर हैंड हो और मुलाजिमा जो है, मेड जो है, वो उसकी बात माने। ये कर दो, ये कर दो, इस वक्त आना, इस वक्त आना, बिल्कुल सारा निजाम सही। वो काम करेगी, आप उसको पैसे देंगे, वो चलेगी, बात खत्म। अगर किसी घर में कहानी उलट हो जाए, मेड लग जाए और बेगम साहिबा कोने में लग जाए, तो वो घर क्या है? डिस्ट्रक्शन। यही हाल हमारी जिस्म और रूह का है। अगर रूह हाकिम है, ये हमें कहे उठो नमाज पढ़ो, उठो रोजा रखो, अल्लाह को याद करो, ये करो, नेकी करो, वही पीछे एक सामे बिर को सोच ले, तो वो जिस्म, वो घर एक खूबसूरत जिस्म होगा। लेकिन जब वो हर वक्त ये दिमाग ही सोचता रहता है ना, अब क्या खाएं, अब क्या पहने, अब किधर चले, अब क्या फान, इस छुट्टियों में किधर जाना है, तो आप समझे कि वो घर की उल्टी गंगा है। और इसके नतीजे में डिप्रेशन है। जो बंदा आपके खानदान, रिश्तेदार, दोस्तों पर में डिप्रेशन का मरीज है ना, उसको ले आए इधर किताब में। मत मुसलमान हो, सिर्फ आके यहाँ बैठ के ये सीख ले कि जब हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, तो हम अल्लाह की बात मानने के लिए अल्लाह अपनी रूह के तकाजे पूरे करते हैं, तो खुशी है। मोमिन की जन्नत उसके अंदर होती है, काफिर की दुनिया में बाहर ग्लैमर है। तो लअल्लकुम तत्तकून को समझे कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए, तुम अपने आप को रोक सको। आंख का, कान का, दिल का, दिमाग का रोजा है। बुखारी की रिवायत है, तिरमिजी और अबू दाऊद में और मुसनद अहमद में भी है कि मल्लम यदा कौल जूरी वल अमिल बिही, जिसने झूठ बात कहना और उस पे अमल करना नहीं छोड़ा, ठीक है, फलैसा लिल्लाहि हाजतन, फिर अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। कई यदा शराबहू व तामहू, कि वो खाना छोड़े या पीना छोड़े। तो रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, गुनाहों से भी रुकना है। तकवा में ये बातें आती हैं। आपने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि तुम जब रोजे से हो, कोई तुमसे झगड़ना चाहे तो कह दो, फकुल फल यकुल इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ती। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि सौम जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। हकीकत है कि रोजा रख के बंदे का गुनाह करने को दिल भी नहीं करता, ठीक है। तो क्या पता चला कि रोजे की हालत में बहुत सारी चीजों से रुकना है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ, जुबानी जुबानी। ये बताइए कि रोजों के अंदर, रोजे की हालत या रमजान के दिनों की जिंदगी और गैर रमजान की जिंदगी में फर्क होता है? बहुत ज्यादा होता है। कितने लोग कहते हैं, हाथ खड़ा करें, ऑलमोस्ट सब यही कहते हैं। जमीन आसमान का होता है कि उससे कम होता है? जमीन आसमान का होता है। तो दुख के साथ कहूंगी कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अब समझ लीजिए, तकवा जो है ना, दो तरह का होता है। एक है मोमिन का तकवा और एक है मुनाफिक का तकवा। एक बिलीवर का तकवा होता है और एक हिपोक्रेट का होता है। मोमिन का तकवा क्या है कि रमजान और गैर रमजान में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। खाना पहले भी दो ही वक्त खाता था, सिर्फ वक्त चेंज हो गया। सुबह 7 बजे नाश्ता करता था तो 5 बजे कर लेगा, दैट्स इट। सारा दिन उसका चूल्हा नहीं खुलता। डिनर रात को असर से मगरब में करता था, तो अब मगरिब से ईशा के बीच में करता है। पहली बात, खाने पीने में तब भी पेट में थोड़ी जगह रख के छोड़ देता था, अब भी तब भी नेचुरल पे रहता, तब भी नेचुरल पे। ना उसकी ईटिंग हैबिट में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ना उसकी बाकी चीजों में। आम हालात में भी मोमिन दिन में 5 दफा मस्जिद जाता है, और घर में है तो वक्त पे नमाज पढ़ता है, तो रमजान में भी। आम दिनों में भी मोमिन की आंख का रोजा होता है गंदी चीजों से, फुखश से, ड्रामों से, फिल्मों से। आम दिनों में भी हु केयर्स, उसको क्या लगे रोजे हैं कि नहीं, उसने गंदी चीज नहीं देखनी, गंदी चीज नहीं सुननी। आम दिनों में भी रोजे, मोमिन की जुबान गीबत से रोजा रखती है, वो नहीं गीबत करता, ताना नहीं देता, चुगली नहीं करता, ताक छान नहीं करता, बेकार बेकार बाजारों में नहीं फिरता, अपने दिमाग को खराब नहीं करता। मोमिन की फर्क नहीं, फर्क क्या पड़ा? वो जो रात के आखिर में जाके तहज्जुद पढ़ता था ना, 8 रकतों की सूरत में, फजर से पहले, वितर से पहले, वो रात को पढ़ लेता है, जिसको तरावी कह देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि अल्लाह को पता है उस वक्त उसको खाना पीना है। आमतौर पे भी मोमिन का हर वक्त ध्यान सेक्स की तरफ नहीं होता, रोजे के दिनों में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फितरत पे होता है, जल्दी सोता है, जल्दी हटता है। रमजान में भी यही हाल है। आम दिनों में अगर उसको जिस्मानी तकाजों के लिए किसी चीज की जरूरत, तो रमजान में कोई फर्क ही नहीं। तो मोमिन के रमजान और गैर रमजान में बिल्कुल मामूली फर्क होता है। आ जाइए अब दूसरी तरफ, एक मुनाफिक नमाज जिंदगी भी होती है, निफाक से भरपूर। वो रमजान से पहले ही सोचना शुरू कर देता है, नहीं बस रमजान में मैंने नहीं ये करना, ये नहीं कहता कि अब इसके बाद नहीं करना, वो कहते सिर्फ रमजान के दौरान नहीं करना। टीवी को बंद कर दो, सारी वीडियोस छुपा दो, तस्वीरें बदल दो, खूब पढ़ना है, मस्जिद में भी जाना है। मुनाफिक का तकवर चांद के साथ बढ़ता और घटता है। पहले दिन मस्जिद खूब भरती है नमाजियों से, खूब आहिस्ता आहिस्ता मड़ान जा रहे, तरावियां भी पढ़े, बच्चे भी गए, 3-4 रोजों के बाद ठुस, फिर तरावियां भी कम, फिर आखिरी रातों में फिर जोश आता है कि नहीं अब तो जाने लगा, फिर वो झूठ नहीं बोलता फिल्म में, वो किस इंतजार में होता है ईद आले, फिर देखना क्या करते हैं। उसको हर वक्त गम पड़ा होता है, अरे नहीं 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 चुप चुप रोजे हैं। ये जुमला जितनी दफा आप रमजान में बोले ना, अरे अरे ये नहीं करना रमजान है, तो समझ लें ये मुनाफिक लअल्लकुम तत्तकून है। अब आप खुद देख लें, हम सब अपनी जिंदगियों पे गौर करें और सौ सौ आंसू बहा लें अगर हमारी हालत दूसरी है। हमारा नाम हमारे यहाँ रोजे के हैं, और खाओ, वो नहीं जो कभी खाए आम दिनों में, वो अब और खाओ। पकौड़े तले तो रमजान की याद आती, समोसे देखे तो रमजान की याद आती, पराठे बनाए तो रमजान की याद आती, दूध दही का इस्तेमाल करें तो रमजान की आती है। अल्लाह की बना, हमारी रूह ने क्या खाना है, हम तो रमजान में भी इसी गम में मुबतला रहते हैं कि आज क्या खाना है। रस्म, उसकी इफ्तारी है, आज ससुराल की इफ्तारी है, आज मैके की इफ्तारी, बच्चियों के ससुराल की इफ्तारी। कहते क्या जी रोजा रखवा खुलवाना सवाब है, खुलवाना है तो घर के गरीब मस्कीन गरीबों का खिला दे, जिनसे काम करवा करवा के आप उनके भी रोजे खराब करते हैं। तो लअल्लकुम तत्तकून को जितना ज्यादा एलेबोरेट करके देख ले, आप अपने ऊपर इस चीज को महसूस कर सकते हैं। मोमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी रमजान था जो पिछला, इस साल तो इधर था, इससे पीछे वाला रमजान नॉर्वे में थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे दिन होते हैं, 11:30 तक भी मगरिब चली जाती है, फजर जिस वजह से सुबह खाना ही नहीं, उसको क्या लगे फजर कब हुई, लेकिन 2-2.5 बजे फजर शुरू हो जाती है। 20 घंटे का भी रोजा होता है, 21-22। अक्सर लोगों की जुबान पे यही जुमले होते हैं, हाय क्या होगा ईद। एक तो मुझे जुमला भूलता नहीं, एक बहन का, कहती ये रोजे हैं ये सजा है हमें, नऊज़ु बिल्ला, इतनी उनकी जुबान में रौनत और कड़वाहट थी कि मैं को अल्लाह करे अल्लाह ने इसकी बात ना सुनी हो, पता नहीं इसके ऊपर क्या बवाल टूटेगा। इस मतलब बड़े गुस्से से कहा कि हाँ रोजे रखवा के बीमार करना है हमें। ये किसका तकवा है जिसने कभी चखा नहीं। जो बंदा पूरे साल में हर महीने में 3 रोजे रखता है, और अगर अल्लाह और तौफीक दे मंडे से थर्सडे भी रोजे रखता है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने किसी से बात हुई तभी तो मैंने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता, हमारे घर में तो कोई फर्क ही नहीं होता, सारा साल ही अल्लाह के हुक्म से नफिल रोजों के इख्तमाम में वही हालात है, बल्कि मैं खुश होती हूँ रमजान है, सच बता रही हूँ, खुश होती हूँ रमजान है कि रमजान में एक तो माहौल बना होता है, और मस्जिदों में कुछ ना कुछ वक्त बे वक्त पे, जैसे मर्द जाते हैं मेरे हस्बैंड है तो इनको कुछ कंपनी, कोई खजूर तो मिल जाएगी ना, अगर मस्जिद में ये खुद नहीं भी लेके जाएंगे, और दूसरे भी हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं लगता। वो ये तमाम सारा साल खजूरें और पानी वैसे ही होता है जैसे होता है। तो बात का खुलासा क्या है कि रमजान एक ट्रेनिंग सेशन था ताकि बाकी 11 महीनों में दूसरी बातों को करो। इसलिए आप और मैं अब रोजे के असल पहलू को ना भूलें कि इस रोजे में हर चीज से अपने आप को पाक करना है। बाकी रहेगी बात रोजे के फायदे क्या है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत पता चलेगा। आज तो नॉन मुस्लिम्स ने लिख दिए फायदे, मुस्लिम्स को तो छोड़ दें, किताबों की किताबें लिखी पड़ी हैं कि मैदे को खाली छोड़ो थोड़ी देर। हर वक्त जो एक चूल्हे पे बर्तन रहे तो काला ही होगा ना, कभी इसको धो के साफ करके रख दो। हर वक्त मैदे में हम थोड़ी देर पर चंक के सूरत में कुछ डाल देते हैं ना, अब मैदे की मशीन काम शुरू कर देती है। रोजे में क्या होता है कि चले कम अज कम शुरू आखिर में बहुत भी खा ले, लेकिन बीच में 10-12 घंटे कुछ नहीं खाते तो स्टमक को मौका मिल जाता है रेस्ट का भी, और जिस्म के अंदर जो जमी हुई चीजें होती है वो निकल जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने अंदर इस तकवा को लेकर आना चाहते हो तो शऊर वाले रोजे रख लिए रखते हैं कि गरीबों का दर्द पैदा हो, भूख पता चले, गलत बात है। रोजे का मकसद एक ही है, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह के सामने खड़े होने को देखो, जब्त करो, फिर देखो तुम्हें फायदा कितना होता है, और फिर आप देखो कि कुछ दूसरा भी तो काम करना है रमजान में। ये तो बात आप सब मानेंगे कि वक्त में बहुत बरकत होती है, और उसकी वजह एक ही है, चूल्हा बंद होता है। रमजान के दौरे कुरान में जिस तरह बहनें हूम हट के आती हैं और जोश से आती है, तो अब अल्लाह ने आपको जोड़ दिया। आपने कहा जुड़ना था अगर ये आपको कुरान ना ऑफर किया जाता, आप भी तो दौरे कुरान के लिए आए थे ना, अल्लाह ने मौका दिया, आपने पकड़ लिया। क्या आज आपकी दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे नहीं है जो आना चाहते थे रमजान में लेकिन अब नहीं आ पा रहे? आपका क्या ख्याल है, नौज बिलों को शौक नहीं है? ऐसी बात नहीं है, चूल्हा खुल गया, बीच में लंच तैयार करना है, नाश्ते तैयार, खाने पीने। बहुत सारे लोग सिर्फ खाने पीने की वजह से कुरान सीखने नहीं आ पाते, और सिखाने वाली बात तो फिर बहुत दूर होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सही मानों में हमें तौफीक दे। अब कुछ अहकाम आते, ये तो रूह थी, समझ आ गई है? कोई बात, क्वेश्चन इस बारे में? चलिए आगे चलते हैं। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। तसल्ली भी है इसमें और हुक्म भी है। तसल्ली किस बात की है कि मरो नहीं, थोड़े से देर ना गुजर जाएंगे, इतना के शोर मचाते हो, ठीक है? और हुक्म पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि फमन कान अमिन को मरीदन, तुम में से जो कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर पे हो, ट्रेवलर हो, मुसाफिर हो, फायदत मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करो, ये हुक्म है। पता क्या चला कि रोजा तो फर्ज है लेकिन किसी मजबूरी से अगर रोजा छूट जाता है, छूट सकता है, एक्सेप्शंस मौजूद है, कैसे? मरीज नंबर एक, बीमारी। कौन सी बीमारी? जिसमें रोजा रखने से बीमारी के बढ़ने का खतरा हो। ये नहीं कि इधर कट लग गया छुरी से, मैंने रोजा नहीं रखना, कट लगा हुआ, ऐसा रोजा नहीं। बीमारी से, ऐसी बीमारी के जिसमें इंसान बच ना सके, या जिस तरह भी है मौत का डर हो, तो फिर ना रखे, कोई गुनाह नहीं, लेकिन फइद्दत मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में रहो, ठीक है? फिर दूसरी चीज है सफर। सफर में जाए बंदा तो रोजा छोड़ सकता है, बहुत सारी वजूहात है। पहली बात यह कि सफर हमेशा बामकसद होता है इस्लाम में, ऐसे ही बंदा बस इधर से उधर घूमने के लिए नहीं जाता। तो सफर में जिस काम के लिए गए हो ना, फटाफट करो और वापस आ जाओ। हो सकता है रोजे की वजह से नकाहत हो जाए, तुम्हारी तबीयत पे बोझ हो, सुस्ती हो, तो ज्यादा दिन रुकना पड़े, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हदीस में सफर को अजाब का टुकड़ा कहा गया, ठीक है? इसलिए कहा कि रोजा छोड़ सकते हो तो छोड़ लो, कोई हर्ज नहीं। अब इसमें सफर की आसानी, कल की, आज की, नो प्रॉब्लम, जहाज में जाएं या घोड़े पे जाएं, एक ही बात है, आपकी मर्जी रखें। शर्त एक ही है कि फायदा तो मिन अय्यामे नुखर, ये बंदा खुद सोच लेता है कि अच्छा बाद में रखना मुश्किल होगा तो रख ही लेता हूँ, रख ले तो भी गुना नहीं, ना रखे तो गुना नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी एक और वजह भी होती है सफर में, और वो क्या है कि आप अमेरिका से रोजा रख के बैठे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ आए, आपका दिन रात रात दिन में बदल जाएगा। हमने ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं कि बैठते सुबह को हैं तो जब निकल जाते हैं वहां, तो वहां फिर सुबह ही होती है, 22 बाईस 24 24 घंटे का रोजा हो सकता है, टाइम बदल जाते हैं। इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है, ये सिर्फ मेरे इस शहर को नहीं देखता, पूरी दुनिया को देखता है। तो इस तरह की कवाहतों से बचने के लिए अगर रोजा छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है। यहां तक बात हुई। अब यहां लफ्ज जरा मादूदात को देख लें, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है लेकिन फायदा हो भी सकता है आपको अगर थोड़ा गौर करें। अदद लफ्ज है ना इसका, मादूदात, ठीक है। अरबी जुबान में एक गिनती मुख्तलिफ तरह की होती है। उर्दू इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उर्दू में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सीधी सीधी है। लेकिन अरबी जुबान की गिनती भी बड़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ डिटेल्स नहीं बताऊंगी लेकिन इशारा करूंगी सिर्फ कि इसमें मुजक्कर और मोनस के लिए अलग लफ्ज आते हैं, ठीक है। जैसे एक के लिए अहद है तो अहदा, हाँ? आप देखिए कि 1 से 3, 3 से 9, छोटे छोटे अदद है, इनके लिए एक और साउंड होती है, 10 के बाद के लिए कोई और है। जैसे आप देखिए 1 2 3 से 9 तक सिंगल लेटर्स होते हैं ना, फिर 10 से लेकर 19 तक 1 और 9, 1 और 1 एंड 2, 1 2 3, इस तरह ना, बस इसी को समझ लें, ठीक है। फिर उसके बाद 100 के बाद 3 लफ्ज शुरू हो जाते हैं, 1000 के बाद 4। तो मादूदात, मादूदात ये लफ्ज जो ना, ये जमा से भी आगे जमा है, आप ये कह लें। असल लफ्ज था मादूद, जिसको गिना जाए, शुमार किया हुआ, काउंटेड के मानों में लिख लें इंग्लिश में। इसी से मोनस बनी मादूदा, एक गिनी हुई चीज, और मादूदा तो उनकी जमा मादूदात, 3 दिनों पे कहते हैं इसका इतलाक होता है। इशारा है कहते हैं इसमें उस फेज की तरफ जो महीने में 3 रोजे थे, बस इतनी बात। लिख लें तो लिख लें, नहीं लिखें तो घबराए नहीं, ठीक है। गिनती के चंद दिन है, बाज कहते हैं कि इसमें इशारा वो 3 दिनों के रोजों की तरफ है, बाज कहते हैं नहीं ये आज की भी है। फर्क इससे कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि हुक्म वही है जो आपको शुरू में सुना दिया गया। आगे चलिए, वाललजीन युतीकूना हो, ये है असल लफ्ज जिसको आप इसकी हिस्ट्री से पहचान लेंगे। और तुम में से जो लोग ताकत रखते हैं, इसकी लफ्ज यही है ना, युतीकूना हो, ताकत रखते हैं, लेकिन फिदयतुन ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना, ठीक है। अब क्या समझ आई? अब इसे एक लफ्ज पे बहुत सारी बातें इन लोगों ने की, लेकिन मैं आपको इसमें से बस पिक करके वो बात बताती हूँ कि आपको अभी मैंने हिस्ट्री में सुना दिया कि रोजे की फर्जियत में एक ऐसा इंटरफेस गुजरा कि चाहे रोजा रख लो चाहे फिदिया दे दो। एक तफसीर इसकी ये है, युति को ना हो, ताकत रखते हो लेकिन कोई बात नहीं, फिर यह तुम काम हो मिस्किन, किसी और को दे दो। बाज कहते हैं कि इस आयत में उस हुक्म की तरफ इशारा है जब अभी रोजे की दरमियानी नौइयत चल रही थी, चाहे रोजा रख लो चाहे मिस्किन को खिला दो। एक तफसीर है, बिल्कुल ठीक है ये। एक दूसरी तफसीर है, वो कहते नहीं युति को ना हो से पहले ला है, तो मानी क्या बन जाएगा, तुम में से जो लोग नहीं ताकत रखते इस रोजे की तो एक मिस्कीन को खाना खिला दें। तो आजकल ऐसे ही है, वो कहते हैं इससे मैंने ला है। और इसकी 6 7 तफसीरें हैं जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आज हुक्म यही है, रोजा रखना है, मजबूरी में छुटेगा तो फिदिया देने के लिए एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे। वो कितना होगा? बस एक वक्त का खाना, ठीक है। इसके अहकाम आप सब इंशाल्लाह किताबो सौम में पढ़ेंगे, इधर ही अल्लाह ने चाहा तो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, फमन ततव खैरन फहुआ खैरुल्लहु, जो कोई खुशी से नेकी कर ले या ज्यादा कर ले तो ये इसके हक में बेहतर है। अब इसको देखिए, पहली तफसीर के साथ अगर इस हिस्से को जोड़ेंगे तो क्या मतलब है कि रोजा रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो किसी को रखा दो, लेकिन खुशी से खुद रख लो तो ये ज्यादा बेहतर है। समझ आ रही है बात? एक तफसीर। और अगर दूसरी तफसीर कर लें जो भी बाद में बताई कि रोजा नहीं रख सकते तो फिदिया दे दो। अब फिदिया तो दे दिया, वक्ती तौर पे तो कफारा पूरा हो गया, लेकिन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, अब कफारा भी दे चुके हो, बाद में फिर रोजा भी रख लो, ये मुराद है। कौन इस समंदर को पिएगा? नहीं पी सकते। एक एक लफ्ज, मैं तो आपके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलती हूँ, यकीन करें, हालांकि इस एक एक लफ्ज की बीसियों तफसीरें मेरे पास मौजूद होती हैं, पर मैं आपको उलझाना नहीं चाहती। हुक्म के लिए पढ़ रहे हैं कि अपने अमल के लिए पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर लोगों ने जिंदगी ऐसे ही नहीं लगा दी पूरी। वो पेट के तकाजे नहीं हर वक्त पूरे करते थे, जो मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता था तो वो कई के दिन नहीं खाते थे। उनका ये हाल था क्योंकि उन्होंने इस दीन को अपनी जिंदगियां दी हुई थी, इसी उसी उन्होंने ये मोती जमा किए जिसको आज हम जमा करके आप तक पहुंचाते हैं। ये उलमाए कराम की कोशिशें, मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन कराम, आप तो उन तफसीरों के नाम तक नहीं जानते होंगे जिन्होंने इन गुत्थियों को खोला। वो तो इतने मुश्किल नाम है, लेकिन आज अगर हम अपने लिए पढ़ना चाहें तो हमारे लिए इसमें यही बात है कि रख भी लो और उसके बाद उसकी किफारा भी दे दो तो भी ठीक है। और हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, हर हाल में रखा, हर मौके पे रखा। कावान तसूमु खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम रोजा ही रख लो तो ये तो सबसे बेहतर है। आगे नहीं इशारा, ला रहे हो अच्छी बात है, छोड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का मशवरा कह के रोजा रख लो तो ज्यादा बेहतर है, यानी मुश्किल हालात में भी रख लो तो ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी कहते हैं इसको, कि असौमु ली व अना अजजी भी, रोजा मेरे लिए है और इसका जजा, इसका अजर मैं दूंगा। आप देखिए कि रोजा कितनी हिडन इबादत है ना। हम सब इधर बैठे हैं, मैं सुबह से, अभी जोहर का वक्त होगा, जो भी उठ के पढ़ेगा सबको पता चल जाएगा ना। हत्ता के असर का वक्त हो जाए और कोई उठ के ना बैठे तो हमें पता चल जाएगा ना इसने नहीं पढ़ी। और इबादत कोई देख लीजिए, सदका कोई किसी को देता है, कम से कम एक बंदे को तो पता चल जाता है ना जिसको आप देते हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह और बंदे के बीच में एक राज है। आप नहीं खाना खा रहे, ना खाएं, हम ये नहीं कह सकते कि आपका रोजा है। आप कहें रोजा है, बाथरूम में जाके पानी पी लें, हमें तो नहीं पता ना, ये छुपी हुई चीज है। और हकीकत है कि तकवा ना और अल्लाह की मोहब्बत ना तो बंदा रोजा नहीं रख सकता। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका अजर मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे लिए इस बात को आसान कर दिया जाता है, तुम इसको जितना करना चाहो कर लो। अब यहाँ चंद बातें रमजान के रोजे में, हमने मरीज की बात की, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ सायतों को गो थ्रू करके अहकाम इकट्ठे एक दफा चाहे कल बोल दूंगी, जिंदगी रही तो। कल से मुराद घबराए नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली आयत पे चले ताकि आप समझ सकें। अब यहां लफ्ज आ रहा है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का बाबरकत महीना है जिसमें कुरान का नजूल शुरू हुआ। कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है। और नंबर दो, वबैजीनात मिनल खुदा, और जिसमें राह हक पाने वाला, और वल फुरकान, हक और बातिल के फर्क की रोशन निशानियां हैं। बस इतने को ब्रैकेट्स में लगा लें। आयत के शुरू से लेकर वल फुरकान तक रमजान के नाते से कुरान की बात है। यहां पे थोड़ा सब समझ लें अगली आयतों पे जाने से पहले, कि रमजान के दो तोहफे हैं, रमजान के दो तोहफे हैं। नंबर एक, कुरान, क्योंकि रमजान के महीने में कुरान का नजूल शुरू हुआ था। पहली वही रमजान में शुरू हुई थी, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लजी खलक, नंबर एक। और दूसरी बात जहां नोट की, 22 साल 6 महीने और कुछ दिन में नबी सल्लम के कल्बे अतर पर नाजिल हुआ था। मक्की दौर 13 साल का और 10 साल मदनी, कुछ दिनों के कमोबेश से। अब ये तो 23 साल में उतरा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो रमजान के महीने में उतरा, तो समझ लें इशारे से। अब देखिएगा, समझिएगा, कुरान नजुले कुरान के दो मरहले हैं। एक मरहला अल्लाह ताला के पास से, जिसको आप लोहे महफूज कह लें, लोहे महफूज ऐसे कि जैसे आपका क्लोजेट है, स्टोर, पीछे छुपा के अपने चीजें रखी होती हैं, पहले चीजें वहां जमा करते हैं, जरूरतन वहां से घर के किचन में ले आते हैं। इतनी बात समझ आती? कुरान सबसे पहले लोहे महफूज में था, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई, चीजें बनाई, रखी वहां, सब जगह होगा। उधर से आसमाने दुनिया, जो ये नीचे हमें दिखता है, इधर यक मुश्त पूरे का पूरा एक ही वक्त में नाजिल हो गया, और वो रमजान का महीना था। आसमाने दुनिया से इस जमीन तक आने में ये दूसरा नजूल है, ये 22 साल 6 महीने लगे। बात समझ आ गई? ठीक है। नंबर एक, रमजान का दुनिया में कुरान में कुरान का नजूल रमजान के महीने में शुरू हुआ, इसलिए इसको रमजान में कहा जाता है। और दूसरी बात इसमें क्या समझ आती है, लौहे महफूज से यानी जो बेसिक स्टोरेज है जगहों का, वहां से उठाकर इसको इधर रख दिया गया, पहले आसमान पे जो हम सबको दुनिया में दिखता है, और उसके बाद से फिर ये दूसरी दुनिया इधर आने में 22 साल लगे। तो आप कह सकते हैं कि रमजान की शान कुरान से है। क्यों? इसलिए कि वो कुरान जो रोजे की हालत में और जो भूख की हालत में समझ आता है ना, वो वैसे नहीं समझ आता। ये तो आप भी मानते हैं, भरे पेट के साथ कुरान नहीं पढ़ा जाता। यहाँ भी आप देखते हैं कि ब्रेक से पहले जो आप पढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जो आप पढ़ते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चीज मैं यहाँ बैठ के आपको बता सकती हूँ। चाहे आपको इस वक्त भूख लगे हो, थके हो, अगर आप सुबह से ही नाश्ता करके आते हैं तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। और इसके बरक्स दूसरी चीज है। तो लिहाजा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान इसमें नाजिल हुआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौरा करते थे, दौरे कुरान जो आज हम कहते हैं ना। जितना कुरान का हिस्सा नाजिल हुआ होता था ना उस साल में, उसको दोहराते थे, रिवाइज करते थे। और आखिरी साल था जो आपकी जिंदगी मुबारक का, उस साल आपने 2 दफा किया। ठीक है, ये बात समझ। 25वीं और 27वीं रात, 3 रातों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से क्याम किया, तरावी जिसको आज के दौर में आप कहेंगे। ठीक है, कुरान पाक की कुछ सिफात इधर आई है। नंबर एक, हुदन। किताब क्या है? हुदन लिन्नास। हिदायत कैसे मिलती है समझेंगे तो, समझने के लिए क्या जरूरी है? अपनी जुबान में पढ़ना। अब आप मेरी जुबान से उर्दू में सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है ना, ये है हुदल लिन्नास। तो जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उनको समझ कहां से आएगा? बात वाजे। तो गोया कि इस कुरान का नजूल क्यों हुआ? ताकि इससे गाइडेंस ली जाए। आप इसको यूं समझेंगे जैसे एक मैनुअल होता है, आप एक माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, बुकलेट, मोस्टली लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो बुकलेट्स होते हैं उस पर, कि रीड इट बिफोर यूज। सिंपल सी बात है, यूज से पहले पढ़ लो। उसमें लिखा होगा इसको 220 वोल्टेज पर डालो, 420 पर डालो, इसमें पानी डालो, ना डालो, खुश करो, करते हैं ना। एक बंदा मशीन लाए, झट से उसको ला के सॉकेट में डाल दे और झट से फट जाए, होगा क्या? जल्दी उठा के ले जाए कंपनी के पास, क्या आपने कैसी मशीन बनाई है, तो चलती नहीं, ये तो गंदी है, ये खराब है, ये तो जल गई। तो कहेगा जी आपने इसको इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में पढ़ा था, कि वो क्या होती है, मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरा ख्याल था मुझे आता है। अब बताइए कोई क्लेम चलेगा उसका? सेम यही हाल कयामत के दिन उन लोगों का होने वाला है जो इस किताब को किताबे हिदायत बनाए बगैर जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज इंसानियत में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो दुख है, फैमिली सेटअप बिगड़ा हुआ है, शोहर बीवी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, माँ बच्चों की तरबियत नहीं कर रही, ये वो, उसकी वजह ये कि इस मैनुअल ऑफ गाइड को हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। ये ऐसे ही कि जैसे कोई एक याहू मैप निकाले घर से निकले कहीं जाने के लिए, तो उसको अपनी विंड स्क्रीन पे लगा ले कि इसकी बरकत से मैं पहुंच जाऊंगा यहां से मैनचेस्टर। नहीं पहुंचेगा, इम्पॉसिबल। सर पे रखे उसको, उसको घोल के पी ले, रास्ता नहीं आएगा। तो ये जन्नत का रास्ता है, ये सबीलुल जन्ना है, ये सुबुल सलाम है, ये रास्ता है जो हमें जन्नत के मौसम बताता है। और आज दुख की बात है कि मुसलमान इसको हर इस्तेमाल करता है, समझ के नहीं करता। आप भी तो मानते हैं ना कि इस कुरान को आज आपकी जिंदगी के कितने साल गुजरे, फिर कहीं आपको इस तरह हल्का फुल्का पढ़ने का मौका मिला? अभी भी डेप्थ में नहीं हम जा रहे, आपसे तो ज्यादा ये आमना खुशकिस्मत है। सच कह रही हूँ कि इनकी जिंदगी का चौथा दिन है और अल्लाह की तरतीब पे मैं हैरान हूँ। आप देखिएगा, अगर आप बगैर छुट्टी किए ये पूरा दूसरा पारा कर गई ना, तो आपको पूरा दीन समझ आ जाना है। वो ही बातें जो लोग कई कई साल में नहीं पढ़ पाते, वो आपको अपनी पैदाइश के एक हफ्ते 10 दिन में मिल जानी, तब तक पता चल जाएंगी। पीरियड्स की बातें, तलाक की बातें, इद्दत की बातें, हज की बातें, कसास, जिहाद, कितने इल्जाम लगे हुए आज इस्लाम पे, सारे से एक पारे में, क्योंकि वजालनाकुम उम्मतम वसता। ये उम्मत वसत को अल्लाह सिखा रहा है, ये कितनी खुशकिस्मत है कि अल्लाह इनको इस पे ले आया। तो क्या हमसे ज्यादा फिर इनके अंदर अमल नहीं आएगा? हमने बचपन से इधर उधर से बातें सुनी हुई है ना, मिक्सअप है हमारे अंदर। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी इस बहन को कोई तोहफा, कोई चीज, किताब देते वक्त एक दफा जरूर कंसल्ट कर लें। कुछ चीजें ऐसी मोहब्बत में दी होंगी आप लोगों ने, मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि वो तो मासूम बच्ची है, उनको तो भी कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज ऑथेंटिक चीज आगे क्या करें। आज हमारा सबका भी यही मसला कि हमने इतना कुछ सुना हुआ इधर से उधर से, हमें एग्जैक्ट पता नहीं। तो इस वक्त तो कुरान सामने है, किसी के अफकार नहीं, किसी की फिक्र नहीं, किसी का नजरिया नहीं, हदीस नहीं अभी तो। और आपके सामने एक एक लफ्ज तोड़ के आपको दिखाते हैं, दुनिया की किसी डिक्शनरी से जाके चेक करके चैलेंज कर दें अगर कोई आपको गलत बताए। कभी आपने यहाँ किसी बुजुर्ग का नाम सुना, किसी इमाम का, किसी उस्ताद का नाम सुना मेरे मुंह से, किसी इदारे का नाम सुना? कभी आपने लफ्ज नूरुल कुरान का सुना कि इस नूरुल कुरान से जुड़ जाए और इसके बन जाए और इसके हो जाए? अल्लाह के बन जाए, उसकी किताब आपका हक है। इसलिए इसको जब तक दिल की खाली जमीन पे लेके नहीं सुनेंगे फायदा नहीं होगा। ये कुरान आसमान से तो उतर जाता है, इस दिल पे तब उतरेगा जब आप इसको अमल की किताब समझेंगे। बेजीनात कैसे इंसान का दिल खुलता है, देखिए दो दफा। एक दफा हुदम हुदल्लिन्नास, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर लें। हुदान का लफ्ज़ जहां नकीरा है, कॉमन नाउन है। और आगे आप देखिए कि फिर बेजीनात मिनल हुदा, अल के लफ्ज के साथ ये कॉमन नहीं अब प्रॉपर बन गया, दोनों का फर्क है। आम तौर पे तो गाइडेंस है ही ये किताब, लेकिन इसके अंदर असल गाइडेंस उसको मिलेगी जो कुरान से रजू करेगा, यानी दुनिया की भी कामयाबियां गाइडलाइन और आखरत की भी आपको इस किताब से मिलेगी। आज हम मुसलमानों ने इसको बंद किया हुआ है, इसलिए मारे खा रहे हैं, इसलिए हम पिस रहे हैं। हर दुनिया में हर इल्जाम मुसलमान पे लगता है, टेररिस्ट, कोई त्यारा गिर जाए कहते हैं मुसलमान ने गिराया होगा, हाईजैक हो जाए मुसलमान का नाम, बिल्डिंग गिर जाए मुसलमान का नाम, अल्लाह दुश्मन नहीं है, लेकिन हम मुसलमान खुद मार खा रहे हैं क्योंकि ये किताब अल बैजिनात और अल हुदा नहीं रही हमारे लिए। और वल फुरकान कैसे बनता है, क्या हक है क्या बातिल है, हर वक्त जहनों में सवाल उठते रहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अल्लाह कहते हैं आओ इस किताब को पढ़ लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या हक है क्या बातिल है। आप देखिए जैसे सोना कहाँ खालिस होगा, जहां से निकलता है, बाद में उम्मीद है ना कि उसमें मिलावट हो जाए या ना हो। दूध कहाँ से खालिस मिलेगा, भैंस के पास से। तो कुरान और सुन्नत को खोलेंगे ना तो आपको प्योर नॉलेज मिलेगा। बतो बतो भाई, औरतों के पढ़ने वाली चीज नहीं, ये बड़े बड़े उलमाए कराम की चीज है। हालांकि जिस मुआशरे में कुरान उतर रहा था वो उम्मीद थे, अनलिटरेट थे, अनपढ़ लोग थे। खुद हमारे नबी उम्मी थे, वो किताब अपना नाम नहीं लिख सकते थे, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते थे। इस किताब को पढ़ने के लिए दुनिया की डिग्रियों की जरूरत नहीं होती, हिदायत से तड़पने वाला दिल चाहिए होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। गूंगों को ये किताब समझ आ जाती है, बहरों को ये किताब समझ आ जाती है, शर्त एक है कि दिल खोल के सुनेंगे। और हकीकत है कि कुरान बंदे पर अल्लाह का इनाम है। मैं कहती हूँ सारी दुनिया इसकी तरफ कुर्बान। आप लोगों को 6-6 घंटे बिठाई रखें, इधर की बातें उधर की बातें, उनके दिल नहीं खुलेंगे। कुरान खोल के देखें, फिर देखें दिल कैसे खुलते हैं। आप भी देखते हैं ना लोगों को, इधर की मार रहे हैं, उधर की नीयतें भी अच्छी, इरादे भी अच्छे, लोग भी बेहतरीन। आज हम मुसलमानों के कामों में जो कमी है ना, वो ये कुरान नहीं खुलता। तड़पते हैं लोग के, लोग को दीन की मदद करें, कुछ करें, कुछ पैसा दें। मुझे रोना आता है, सच्ची बात है। कई जगह ऐसे मौके मिलते हैं, मेरा दिल करता है कि कभी कोई ना बोले ना कि हमें पैसे चाहिए इस काम के लिए, बस उसकी जगह लोगों को 1-2 घंटा कोई एक ऐसी किताब की बात, कोई सहाबा की बात सुना दें और फिर उन पे छोड़ दें कि आप चाहते हैं कुछ करना तो कर लें। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां दुनिया में आ जाती हैं हर बंदे पे। आज वो मुसलमान हो, कल से उसको कुरान पे डाल दो, उसको हदीस सिखा दो, 1 साल के अंदर वो हमसे ज्यादा बामल मुसलमान बन जाएगा। हमें तब मांगना पड़ता है लोगों से जब हम लोगों को उस चीज का अंदर हिस्सा नहीं बनाते। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वल फुरकान। बस ब्रैकेट यहाँ बंद करवाई थी, बंद हो गई। दोबारा कुरान रमजान की तरफ इशारा है, फमन शहीद अमिन कुमो शहर फल जसो, इसको हाईलाइट कीजिए। पस जो कोई तुम में से इस महीने में हाजिर हो, बस वो रोजा रखे। ये है वो हुक्म की आयत जिससे पिछले सारे मरहले खत्म। अब ये फर्ज है कि अब जो जिंदा है, शाहिदा से मुराद जिंदा मौजूद है, पाले, और लफ्ज शाहिदा में मुशाहिदा भी है, किसका कोई आप में से बताएगा? चांद देखने की तरफ इशारा है। कैलेंडर पहले ना बना के रख लो 10 साल के, नेवर, कभी हमारे बड़ों में ये नहीं था, आपने सुना, जो पिछले 5 सालों से साइंस को पूछते हुए हमने शुरू कर दिया, फलां दिन रोजा होगा, कैसे बताए आपको? फमन शहीद मिनकुम अश्शहर, चांद देखना सुन्नत है, और चांद देखे बगैर, चांद के देखने के ऐलान के बगैर रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। आप चांद को अगर उसकी हरकतों में जाके देखे, तो आज तो आप हिबल के जरिए जाके मुश्तरी के भी सारे दर्जे देख लेंगे। यहाँ है कमरी चांद, लोग चांद देखते हैं। इस पे आप अगर सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, रमजान से पहले सुनाएंगे 100वें रमजान बुक, उसमें एक पूरा टॉपिक है इस मौजू पे कि चांद को देखने में भी जो खुशी है। और यहां वो बात ज़हन में रखे कि चांद के साथ दिन बदलते हैं, पूरे साल में इबादत करता है बंदा, वरना हर साल एक ही दिनों में चांद आता, रमजान रोजा आता और खत्म। अगर सूरज के साथ रोजे का ताल्लुक होता है ना, तो एक ही वक्त में होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बदल दिया, बदल बदल के दिया। लिहाजा का फमन शहीद अमिन को मुशहरो फलयसुम। अब यहाँ हुक्म चुके बदला है ना, तो जो बात पीछे थी ना, अब उसकी तकरार है। नोट कीजिएगा, पहले हुक्म क्या था? जो रखे रखे, ना रखे ना रखे, मरीज और वहां मुसाफिर का तस्करा आया। अब चूंकि हुक्म आ गया कि भाई अब रखना है, तो दिल में एक सवाल आता है कि शायद अब मरीज और मुसाफिर को भी हमेशा रोजा ही रखना है, क्वेश्चन बनता है ना। तो तकरार के लिए कह दिया, नो नो नो, वो सहूलत अभी भी मौजूद है। क्या? वमन का न मरीदन, जो कोई मरीज हो, अवला सफरिन, या सफर पे हो, फाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फिर गिनती पूरी करना है दूसरे दिनों में। क्या पता चला कि अब आम दिनों में तो फर्ज हो गया, लेकिन मरीज और मुसाफिर पे वो रुख्सत अभी भी मौजूद है, ये मतलब है। इसलिए इस तकरार के दूसरी तरफ है, समझे? और अल्लाह के नबी ने इस पे अमल किया, फतेह मक्का रमजान में हुई। आप हैरान हो जाएंगे रमजान के महीने की बातें सुन के, हर बड़ा काम रमजान में हुआ। मक्का फतेह रमजान में हुआ, हिजरत रमजान में हुई। हम होते तो रोजे रख के सो रहे होते, हम तो सारे काम भी छोड़ देते, नहीं नहीं छुट्टियां भी दे दें, अब हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े काम रमजान में हुए, और आपके साथी रोजे से थे। असर का वक्त करीब था, निढाल, आपने देखा कि साथियों में से कुछ की हालत गैर हो रही है, आपने पानी का प्याला मंगाया और सबको दिखाया, और उसके बाद पी के आपको देखकर सहाबा ने भी रोजा खोला। ये सारी सुन्नतें मौजूद हैं, आप पढ़ के देखें कि हमारा दीन कोई मुश्किल दीन नहीं है। इसीलिए तो कहा कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है, तभी तो मरीज होने और सफर की सूरत में उसने रुख्सत दे दी। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और वो तुम्हारे लिए कोई तंगी का मामला नहीं चाहता, कोई तुम्हें मुश्किल में नहीं डालता। क्या पता चला कि मुश्किल हालात में दीन को अगर नहीं निभा सकते, तो अल्लाह तुम्हें उस तरह नहीं पकड़ता। इसलिए अब अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानो, और क्या करो? वली तुक मिलो लिद्दता था, और ताकि तुम गिनती को पूरा करो। बार बार देखिए तकरार है, गिनती पूरी करनी है। अब यहां थोड़ी सी आप भी अपनी गिनती पूरी करें कि हैज के दिनों, यानी पीरियड्स के दिनों में जो हमारी नमाजें छुटती, हम उसकी कजा नहीं करते थे, लेकिन हमारे जो रोजे छुटते थे, हम उसकी कजा रखते थे। पीरियड्स के दिनों में आपको पता है, 5-6 दिन भी अगर होंगे तो 30-35 नमाजें हुई। जिस दिन पाक हुए, अगर उस दिन आपने फजर के साथ वो 35 नमाजें भी पढ़नी चाहिए, पहली आदत छुटने की वजह से शैतान का गलबा होता है, तो फिर तो नमाजें छूट गई, अल्लाह ने माफ कर दी। रोजे साल में 5-6 रोजे हैं ना, तो रोजे रखने फर्ज हैं। तो अब आप सब भी अपने ऊपर इसको लें। हमारे कल्चर में कजा उमरी के नाम पे पिछली नमाजें तो लोग पढ़वाते हैं, कितने लोग हैं जो छुटे हुए रोजे भी रखाते हैं। मैंने तो कुरान की क्लास में कुछ लोगों को देखा है, आपको तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं हमें आज पता चला कि हमें अपने पीरियड्स के छुटे हुए रोजे रखने थे। आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं पता अभी तक कि जो पीरियड्स में रोजे छूटते हैं जब से आप बालिग हुई हैं, वो आपको मेकअप करने हैं, गिन गिन के तुक मिलो लेद्दा, इद्दत पे कितना लफ्ज जिक्र आज, गिन गिन के रोजे रखो। तो लिहाजा अगर आप में से किसी ने कभी कोई रोजे छोड़े हुए, नहीं रखे, कभी रखे, अंदाजा लगा लीजिए अपनी आदत का, तब से जितने दिन है सालों, फटाफट पता चल जाता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होते आप देखेंगे। और उसके लिए आप सर्दियों में रखने शुरू कर दें, पीर और जुमेरात, थर्सडे एंड मंडे का रोजा रखें, नफली रोजा अल्लाह के नबी रखते थे, आप वो रखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, क्यों भला? जी मैं समझ गई थी, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करते तो मैं बताती। हदीस में आता है कि जिस दिन कोई इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले सब गुनाह माफ कर देता है, आपकी पिछली सारी नमाजें भी माफ है। आज से मेकअप करना है आपने, जिस दिन से आप हुए, अब नमाज आती है कि नहीं, रोजा रखना आता है नहीं, जब भी रोजे आएंगे अपने रखने हैं और नमाज छोड़नी नहीं है, इससे पिछला माफ है। और आपका तो नामे माल अब इतना सफेद है, इसको गंदा नहीं करना इंशाल्लाह ताला। और आप सबको भी रखना है, और जो छोटी बच्ची है उनके लिए तो भी आसान है, अगर आपको 8-10 साल पुराने रोजे रखने पड़ते हैं तो उस सालों को गिन लीजिए और रखने शुरू कर दें। मसला है बड़ी उम्र में जो पहुंच गए हैं, वो फिर इसके ऊपर गौर करें। बहरहाल हुक्म यही है, ठीक है? बाकी इसके अहकाम इस वक्त नहीं बता रही, इसमें बारीकियां और भी बहुत हैं, लेकिन फिर आप उलझ जाएंगे, ठीक है? हाँ, करो क्या वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और चाहिए कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तकबीरात कहो इस बात पर जो उसने तुमको हिदायत दी। इसमें किसकी तरफ इशारा है सोचिए, रमजान के बाद क्या होता है और ईद के दिन क्या होता है, इसमें ईद की तकबीरात की तरफ इशारा है। रोजा रख लिया, अब ईद की नमाज भी पढ़ो, तकबीरात पढ़ी जाती हैं, और हदाकुम से क्या मुराद है, तुमको हिदायत दी। किसकी हिदायत दी? रोजे रखने की तौफीक दी, इस साल दौरे कुरान दिया, इस साल तुम्हें अगले कोर्स का तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रमजान में हिदायत मिलती है ना, और मैं कहती हूँ जिसका एक रमजान जाया हो जाता है उसका एक पूरा साल जाया हो जाता है, इल्ला माशाल्लाह। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने दौरे कुरान नहीं किया था, लेकिन इस क्लास में चंद लोग हैं ना, ज्यादा लोग वही हैं जो दौरे कुरान कर चुके हैं, राइट? तो कुरान पढ़ने के बाद दिल खुलता है, और कावल अल्लकुम तश्कुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो, ये है दीन की रूह। नमाज, रोजा, हज, जकात कुछ भी करो, लेकिन शुक्र के जज्बों से तुम्हारा दिल भराओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये खैर रखी। कितने ही लोग हैं जिनको अभी भी कुरान नहीं मिला, जिनको अभी भी हिदायत नहीं मिली, इधर उधर टकरे मार रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अल्लाह ने हम सबको अपने दीन की बात के लिए चुन तो लिया है ना, अमल भी आएगा जब सुनेंगे समझेंगे, इंशाल्लाह अमल आएगा। तो लिहाजा अपने आप को इन सारी चीजों में रखें। फिर बाकी बहुत सारे काम आता है, बूढ़े के लिए रोजे का क्या हुक्म है, वो मरीज जिसके मर्ज खत्म नहीं होता, जैसे शुगर है, हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए एक अमूमी सी बात समझ लीजिए कि जिस बीमारी के जाने का उम्मीद ही नहीं है, एक तो वो बीमारी है जो आप रमजान में बीमार हुए। अच्छा, कुछ होते हैं ना रमजान में बीमार हो तो रोते हैं, हाय अल्लाह आज ही बीमार होना था, और कुछ कहते हैं अब आइए सही वक्त पे बीमारी, रोजा तो छोड़ देंगे ना। कुछ होते हैं पीरियड्स देख के उनको रोना आ रहा होता है, और कुछ इंतजार करते हैं लग रहे और 4 दिन ही सफर लंबे हो जाए, वही मोमिन और मुनाफिक के तकवे की बातें, ठीक है? लेकिन वो बीमारी जो आई और चली जाती है उनको तो बाद में रोजे भी रखने हैं, कफारा भी दे दें। लेकिन कुछ बीमारियां जो खत्म ही नहीं होती, शुगर अगर, हार्ट पेशेंट है, बुढ़ापा भी एक बीमारी है, तो फिर कफारा है, बस एक रोजे के बदले एक मिस्कीन का खाना किसी को भी दे देंगे तो रोजा हो जाएगा। मुर्दिया का क्या हुक्म है, दूध पिलाने वाली औरत, और इसी तरह हामिला, प्रेग्नेंट औरत, प्रेगनेंसी की वजह से रोजे छोड़ेगी, कफारा दे देगी, बाद में रोजे रखेगी। दूध पिलाने वाली माँ है, बच्चे को दूध पिलाती है, वीकनेस हो सकती है, रोजे छोड़ सकती है, बाद में रोजा रखेगी, ठीक है? तो कफारा उनके लिए है जो बाद में रोजा यानी रख सकते हैं, साथ ही उनके लिए कफारे के साथ रोजा भी है, और दूसरी सूरत में यह है, और वही बात है फत्तकुल्लाह मस्तदा, तुम सवाल आते हैं तो लिख के दीजिए, ठीक है? जी पूछ लें।
जैसे कुछ मरीज खुवाने के लिए फितिया देते हैं, क्या फितिया देते वक्त रोजे रखने जो रोजे
जी
वगैरह खुवाएंगे इससे रोजे दार होना लाजिम?
जी मैंने ये अर्ज कर दिया, मुझे अंदाजा था अभी सवाल पूछेंगी। देखिए, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, ये नहीं कि एक को रोजा रखाना है। आप इकट्ठा खाना लेके दे दें, अब वो उस खाने से रोजा रखे ना रखे, उनके बच्चे खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब जिस मुल्क में रहते हैं वहां के खाने का एक वक्त का हिसाब लगा के खाना दे दें, ठीक है। और इसके मिसाइल आप चाहें तो वेबसाइट साहब आपके कोर्स में मौजूद है, आप घर जाके आज उसका दीदार कर लें, खोल के गो थ्रू कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगली चीज जो रमजान का दूसरा तोहफा है उसके ऊपर बात होगी, और वो क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान रमजान के रोजों में एक तो कुरान का तोहफा दिया और दूसरा तोहफा है दुआ का। रोजे की हालत में जिस तरह कुरान अच्छा समझ आता है, इसी तरह रोजे की हालत में दुआ भी दिल से निकलती है, पेट जो खाली होता है। इसलिए फरमाया, वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं। कौन कह रहा? अल्लाह ताला। किस से कौन पूछे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूं। क्या करता हूं? उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूं पुकारने वाले की पुकार का। कब? इजादानी, जब वो मुझे पुकारे। करो क्या अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो? फलयस्तजीबूली, बस चाहिए कि तुम भी तो मेरी दावत को कबूल करो। वलयुमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाओ। होगा क्या? लअल्लहुम यरजून। नबी सल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल किया, क्या नबी हमें अल्लाह ताला के बारे में बताइए, वो कौन है? करीब है तो हम उसको आहिस्ता से पुकारे, दूर हैं तो ऊंची आवाज से पुकारे। तो उस पे यह आयत उतरी थी, वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दअनी फलयस्तजीबूली वलयुमिनू भी। आप कह लीजिए कि इंसानी हकूक की अगर आप बात करते हैं ना, कि इस दुनिया में इंसानी हकूक का अगर एक मंशूर और एक उसका प्रिज्म बनाया जाए ना, तो ये आयत उसकी दलील है। खालिक और मखलूक के बीच में कोई रुकावट नहीं है। दुनिया में लोगों ने बहुत जगह ऐसा करना चाहा कि बीच में खुद बड़े बन गए। मसलन क्रिश्चियनिटी की मिसाल देती हूँ, उनके नजरिए के मुताबिक किसी से कोई गुनाह हो जाए तो प्रीस्ट के पास आएंगे, फिर पार्डन करेंगे, खरीदेंगे 100 डॉलर वाली, 200, 500 डॉलर, कितने की पार्डन लेनी है प्रीस्ट साहब से लेके रो धो के जाएंगे, कहेंगे आज हमारा सिन माफ हो गया। इसी तरह बाकी मजाहब में भी कुछ इसी तरह के नजराने और न्याजें चलती हैं कि फलां फलां पीर के पास आओ, उसका दामन पकड़ो, काला बकरा जिबा करो, पहले उनसे आओ। अल्लाह कहता है ये सब खालिक से मखलूक को तोड़ने वाले लोग हैं, तुमने गुनाह किया ना, मेरे पास आओ। देखिए, बच्चे से कोई काम गलत हो जाए तो माँ क्या कहती है, मेरे पास आओ, मुझे बताओ, कुछ चीज टूट गई है ना, आके रो पड़ो, मैं समझ जाऊंगी इससे कुछ नुकसान हो गया। और आपका बच्चा कोई गलत काम हो जाए, आपकी बजाय जाके आपकी दोस्त को बता दे और वो फिर उस पे और से और बातें बनाए, तो आप सोच सकते हैं आपको कितना गुस्सा आएगा। इसी तरह अल्लाह को उस वक्त बहुत गुस्सा आता है हमारे ऊपर जब कोई गम तकलीफ मुश्किल पड़ती है हम पे और हम अल्लाह की बजाय किसी जिंदा या मुर्दा के पीछे पड़ जाते हैं। हम जाके उसे दुआएं कराते हैं, भाई दूसरा आपके लिए दुआ क्यों करे, रब आपका नहीं है? भाई मेरा रब है, मैं खुद मान लूंगी, आपको क्या लगे, ये मेरा रब है, इट्स माई पर्सनल मैटर, आप क्यों बोलते हैं? अल्लाह तो बंदे की इस तरह परते रखता है कि कान पड़ी बात नहीं सुनने देता किसी को। वो आपने वाकया सुना होगा ना, हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही थी और लोग खुले मैदान में गए कि बारिश की दुआ करें, जाके दुआ मांगी कि अल्लाह ताला बारिश दे दे, तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए मूसा के दिल में डाला कि आपकी दुआ तो ठीक है, लेकिन इस महफिल में कोई एक ऐसा गुनाहगार बैठा है जिसकी वजह से किसी की भी नहीं कबूल, नाम फिर भी नहीं बताया। माएं अपने बच्चों के राज दूसरों को नहीं बताती, खुद मारपीट भी ले। हर मूसा ने भी कह दिया कि भाइयों हम में से कोई एक ऐसा है जिसकी दुआ की वजह, जिसकी गुनाह की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही। ना मूसा ने बताया ना अल्लाह ने बताया। अब जिसने गुनाह किया होता है उसको तो पता होता है ना। अब सूरह कियामत में पढ़ेंगे, बलिल इंसान वला नफ्सही बसीरा वला वल्का माजीरा, बस उसने अपने ऊपर शर्म की, लानत माना की, कितना बदनसीब हो, मेरी वजह से इतनों की दुआ नहीं कबूल हो रही। वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या बातें, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। मूसा ने अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा था बारिश नहीं होगी, कोई एक गुनाहगार बैठा है और अब बारिश भी हो गई। कहा मूसा आपको क्या पता, उस बंदे ने यहाँ बैठे बैठे अभी तौबा की, मैंने उसकी तौबा कबूल की। वहीदा साल कई बादी अन्नी फैनी करीब मुजीब दावत दाई इजाद आनी, तो मुझे पुकार के तो देखो। वो कहते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, हमें रब से मांगने ही नहीं आता। तो याद रखिए कि अल्लाह तक पहुंचने का जरिया ना तो कोई पोप है, ना पादरी है, ना पंडित है, ना पुरोहित है, ना कोई पीर है, ना जिंदा है ना मुर्दा है। जब चाहो अल्लाह से कलाम करो। लोगों के पास जाने का तो वक्त भी होता है ना, प्रोटोकॉल होता है, कितने दरवाजों से गुजर के दरवाजे खुलते हैं। दिन तो दिन, रात में जाके देखो। हदीस में आता है रात को अल्लाह आसमाने दुनिया पे आके पुकारता है, हल में मुस्तगफिर, कोई है जो बख्शिश तलब करता है, मैं उसको बख्शना चाहता हूँ। है कोई बीमार जो बीमारियों से शिफा चाहता है, मैं उसको सेहत देना चाहता हूँ। है कोई रिस्क पाने वाला, चाहने वाला, मैं उसको रिस्क दूं। और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे बरदे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। कहते हैं ये अल्लाह के बीच में ये जो बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं ना, ये अल्लाह के साथ बंदों को तोड़ते हैं। एनी टाइम मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, रात को आओ, दिन को आओ, रमजान में आओ, ईद की रात आओ, तुम पुकार के तो देखो। ये लफ्ज़ उजीब देखिए, इजाबत, किसी की पुकार का सुनना और उसका जवाब देना और उसको कबूल करना, ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। सुनना, जवाब देना, शर्त एक है, फल यस्तजीबू ली, तुम भी तो कबूल करो, मेरा हुक्म मानो, तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी मानूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, पीछे पड़ चुके हैं। वल्युमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाए। कैसे, किस चीज का ईमान? कि मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं सुनता हूँ। इस पे एक लेक्चर है, दुआ मोमिन का हथियार है, मेरे गुमान के मुताबिक वेबसाइट पे भी है और दावा सीडी में तो वो मौजूद है। सुन के देखें बहुत डिटेल से, किसकी दुआ कबूल होती है, किसकी नहीं होती, किन जगहों पे होती है, क्या औकात मौजूद है, खुद भी सुने, उसकी कॉपियां करवा के दूसरों को बांटे, लेकिन लोगों को उनके रब से जोड़ दें। अल्लाह ताला का बंदे से मामला कंडीशनल है, जैसा तुम मेरे साथ मामला करोगे मैं सब मैं करूंगा। अल्लाह ने बंदे को बराबरी पे रख दिया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आगे आप पढ़ेंगे इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी करेगा। और साथ ही साथ कहा लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो भलाई पाले, सही राह पे आ जाए। ये है सही तरीका कि रब के बीच में रुकावटें ना खड़ी करो। वो सब का है, जितना एक बुजुर्ग का है उतना आपका भी है। आप अपनी ऊपर लेके देखिए, शौहर और बीवी के बीच में बात होती है ना, तो बीवी शौहर से मांगेगी ना, शौहर दे ना दे मांगेगी तो उसी से ही ना। और अगर वो शौहर की बजाय उसके दोस्त से मांगे और साथ ये भी कहते ये देते नहीं है, जरा तुम दे दो खर्चा घर का, फिर देखिए उस रात जो लड़ाई होगी। कहेगा मेरे शरीक से मांगा तूने, मेरी नाक कटा दी। तो जब हम अल्लाह को छोड़ के दूसरों से मांगते हैं तो क्या हम ऐसे शरीके नहीं करते? इसी को शिरक कहते हैं। यही है पार्टनर बनाना, एसोसिएट बनाना। ला तजलु अंदाद अल्लाह, उसके लिए शरीक ना बनाओ। अब इसके बाद मौजू पूरा हो गया है, लेकिन कुछ अहकामात जिनका ताल्लुक, अब यहां देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इबादात मामलात में ढलती हैं। रोजा बंदे की फितरी इबादत थी, अपने लिए थी, हो सकता दूसरे का ना हो, या दोनों का है, तो कुछ ना कुछ इंसानी मामलात में उसकी दखल अंदाजी है। हमारे रोजे का फर्क और किसी को इतना नहीं पड़ता जितना हमारे शौहर को या शौहर की बीवी को पड़ता है। बात वाजे? वैसे तो माँ बाप भाई बहन सब साथ रहते हैं, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें शौहर और बीवी के खास ताल्लुक पे पाबंदी लग जाती है। लिहाजा यहाँ अब शौहर और बीवी के ताल्लुक से रोजे के नाते से इतनी खूबसूरत बात है कि सिर्फ इसका खुलासा भी समझ गए तो बहुत फायदा होगा। आइए देखते हैं। ओहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोजे की रातों में अपनी बीवियों से रगबत करना, ताल्लुक करना, इंटरकोर्स करना, यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक के इंतहाई दर्जे की तरफ इशारा है। यहां समझ लीजिए अहकाम रोजा के मुतालिक, ये बहुत तवील आयत, अब इसे एक आयत में आपको रोजे के तकरीबन सारे अहकाम मिल जाएंगे। यहूद के हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत राइज थी। नोट कर लें छोटे छोटे जुमले। हजरत मूसा की शरीयत में क्या था कि रोजा शाम को ही शुरू हो जाता था और रात भी रोजे में थी। समझ रहे हैं? मगरिब का वक्त हुआ, कुछ खा सकते हो। ज्यों ही ईशा का वक्त शुरू हो गया कह लें, या रात शुरू हुई, नंबर एक, और दूसरी सूरत के कोई सो गया, फिर बोल देती हूँ। समझ लीजिए पहले दौर रोजा कैसे था कि कुछ वक्त के लिए रोजा खुलता था बीच में, मगरिब के बाद खा लो पी लो, ताल्लुक कायम करने कर लो। ज्यों ही रात का वक्त शुरू हुआ यानी सूरज पूरा डूब गया, या सो गया कोई, तो अगले दिन का रोजा शुरू हो जाता था, जिसको हमारी जुबान में अठपहरा रोजा कहते हैं। ठीक है, ये हुक्म चल रहा था। जो ही रात होती थी तो रात को फिर शौहर बीवी का ताल्लुक भी नहीं होता था, और यहूद के रोजे में सहरी का कोई तसव्वुर नहीं था। सोते ही रात का रोजा शुरू हो गया, अगले दिन तक रहता था। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस मसले को रिलैक्स कर दिया। यहां से अब आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के रोजे यहूद के रोजों की निस्बत हल्के कर दिए। क्या? उहिल्ल लकुम लैलत सियाम, रात रोजे की रातों में तुम्हारा ताल्लुक कायम करना ये जायज करार दे दिया, और तुम अपनी बीवियों से कोई ताल्लुक कायम करना चाहो तो कर सकते हो, खा भी सकते हो, खा भी सकते हो। क्योंकि उस दौर में जो मुसलमान थे वो ये समझ रहे थे कि हमारे यहाँ भी रोजे के काम वही हैं जो यहूद के हैं, लिहाजा अब उनको भी शुरू में तो ये लगा कि रात को हमें ऐसा मामला क्यों के लोग थे। नतीजा क्या हुआ कि कुछ सहाबाए कराम जो थे रात को अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करते और दिल पे गिल्ट था, बोझ कायम हो जाता कि हमने गलत काम किया, हमने गुनाह किया। इसी तरह का एक वाक्या भी कहते हैं, कैस बिन सोरेमा, एक सहाबी का नाम था, सरेमा या सोरेमा, कहते हैं कि किसान थे, खेतों पे सारा दिन काम करते रहे, शाम को वापस आए, बीवी से कहा कुछ खाने को है, कहने लगी घर में तो नहीं है, ले मैं हमसाय से पूछ के आती हूँ। वो बीवी खाने के लिए पूछने गई, पीछे में नकाहत की वजह से इनको ऊंघ आ गई, सो गए। सोने का मतलब क्या था? अगला रोजा शुरू हो गया, जाहिर है पूरी रात फिर भूखे रहे। अगले दिन सुबह खेतों पे काम पे चले गए, जब ऐन दोपहर हुई, धूप भी गर्मी भी भूख भी, बेहोश हो गए। अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि नहीं, अब इतनी सख्ती नहीं, अब रोजे की रातों में खाओ पियो, ताल्लुक कायम करो, तुम्हें इसमें कोई गुनाह नहीं। क्यों ये रुख्सत है? हुन्न लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, क्योंकि तुम उन बीवियों के लिबास हो और बीवियां तुम्हारी लिबास है। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए इतनी खूबसूरत बात कह दी कि शायद पूरी पोइट्री इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश में इससे और बीवी के ताल्लुक के लिए नहीं हो सकता कि तुम अपनी बीवी का लिबास हो और बीवी तुम्हारा लिबास है। किनाया? क्यों? आप देखिए कि एक आप लिख लीजिए कि लिबास और जिस्म, और दूसरे शौहर और बीवी, बीच में लाइन बना लीजिए कॉलम। शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास कैसे हैं? लिबास और जिस्म में कोई पर्दा नहीं होता, इसी तरह शौहर और बीवी में भी कोई पर्दा नहीं होता। फिर दूसरी बात देखिए कि लिबास इंसान की पर्सनैलिटी को खोलता है, यानी जैसी पर्सनैलिटी होती है वैसा लिबास सब चूज करते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े फूल डिजाइन, बड़े बड़े गहरे अजीबो गरीब से रंग चूज करते हैं, कुछ बड़े सोबर करते हैं, किसी को प्लेन चीज अच्छी लगती है, किसी को बड़ी उलझी हुई लगती है। फिर लोगों की पर्सनैलिटी पता चलती है ना। इसी तरह एक लड़की कैसे लड़के को चूज करती है शादी के लिए, इससे उसका अंदर खुलता है। कपड़े चूज करते वक्त हम इतनी देर लगाएं, 10 जोड़े कोई दे तो पसंद ना आए, रम्मी को ये नहीं लेना वो नहीं, और रिश्ता अपना लव एट फर्स्ट साइट में पसंद कर ले, फेसबुक पे पसंद करें, और वो हमें बस सिर्फ वो जा जाते दिख गए लव एट फर्स्ट साइट एंड मंगनी एट द अदर साइट एंड तलाक एट द अदर साइट, 3 नजरों में ताल्लुक खत्म। शादी भी झट, मंगनी पट ब्याह और तट का, ये कहानी नहीं है। अल्लाह कहता है जितने क्यूरियस अपने लिबास बनाने में हो, इससे बहुत ज्यादा अपने रिश्ते उन लड़कियों को भी और उन लड़कों को भी जो सिर्फ भंवरों की तरह इधर से उधर चल पड़ते हैं और ऐसी लड़कियों को देखते हैं। आगे कायत आने वाली है, आप बस ये पारा मिस ना करें। फिर देखिए इस कलाम की खूबियां, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां बता दिया। फिर आप देखिए कि लिबास जिस्म के साथ होता है, बड़ी उम्र का बंदा छोटा लिबास पहन ले तो बुरा लगेगा, और छोटी उम्र का शख्स बड़ा लिबास पहन ले तो बुरा लगेगा। इसी तरह रिश्तों में कफ, कफ कहते हैं बराबरी, कम से कम यूनिफॉर्मिटी हो, कंवारा है तो कंवारी, शादीशुदा है तो शादीशुदा। इवन जाहिर को भी देखना चाहिए, अगर लड़का बहुत खूबसूरत है देखने में और लोग भी ऐसे हैं मादा प्रस्त, तो फिर लड़की भी ऐसी हो, वरना वो तानों में ही खा जाएंगे। और खूबसूरत लड़की को अगर शौहर जरा दबा हुआ मिल जाता है तो परेशानी। जो हत्तुल मकदूर कोशिश की जा सके जोड़ पे रिश्ते करने चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास इंसान जब पहनता है तो आप देखिए कि दो लिबास के बगैर इंसान कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। इस तरह शादी के बाद शौहर और बीवी जुदा जुदा अच्छे नहीं लगते। ये जो हमारे कल्चर में ना कि वो दुबई के माल कमाने 7 साल बाद आए, ये बेजोड़ रिश्ते हैं, ये तो बीवी ना बेवा कुछ भी नहीं, वो जिंदगियां नहीं होती। शादी के बाद बगैर किसी वजह के शौहर और बीवी को अलग नहीं रहना चाहिए। मैं तो कहती एक रात भी अलग नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ी जुदाई हो तो अच्छी लगती है, कभी कभी बीच में कुछ गैप्स आ जाए तो रिश्ता फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये जो जुदाई लंबी पड़ जाती है ना, महीनों से सालों के सालों पे, 4 महीने से ज्यादा अल्लाह इजाजत नहीं देता मर्दों को बीवी की इजाजत के बगैर दूर रहना। पढ़ेंगे आगे इल्ला के हुक्म में, आप इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बाकी बातें आप खुद सोचें। पिछले सालों में तो इस पे मैंने बहुत डिटेल से बात की थी, सुनना चाहें तो बाद में सुन लीजिए, लेकिन यहां बता दिया कि तुम बीवी के साथ रहोगे तो राज ना एक दूसरे के दो। कभी आपके लिबास ने लोगों को बताया कि आपकी कमीज, आपके इस बाजू के अंदर कोई दाग है, कोई आपकी कमीज की बाजू ने किसी से बताया? तो शौहर बीवी का कोई राज जानता है, कोई उसके ऐब है जिस्मानी जाती, इसमें इशारा है निजी जिंदगी के राज भी ना शेयर करो। बहुत नापसंदीदा है वो मर्द जो अपनी बीवी के साथ तन्हाई की बातें अपने दोस्तों में करे, और बहुत नापसंदीदा है वो बीवी जो अपनी दोस्त की तारीफें अपने शौहर से करे, इतनी करे कि मर्द के दिल में शौक पैदा हो जाए मैं भी तो देखूं वो कैसी है। नहीं करनी चाहिए गैर औरतों की बातें किसी की भी, चाहे वो दीन वाले हों या दुनिया वाले हों। नेवर डू दिस, इससे आप अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं। फिर अखलाक किरदार सब अच्छा होता है, अल्लाह सुब्हान तआला यही कहते हैं कि मर्द और औरत का ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह कहते हैं कि नए पर्दे ना तालीम, नई होके पुरानी निस्वानियत जन का निगेबान फक्त मर्द है, हैत का मुहाफिज होता है। जैसे लिबास हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, मर्द को इसमें एहसास भी दिलाया गया कि तुम एक दूसरे की जरूरत हो। हाँ आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अन्फुसकुम, अल्लाह के इल्म है कि तुम खियानते करते हो। इसमें इशारा है कि कुछ सहाबा जो ताल्लुक कायम करते थे और वो जायज था, लेकिन वो समझते थे कि नाजायज है, तो अल्लाह ताला ने उनकी दिल की गिल्ट को दूर किया कि डोंट वरी, इस काम की कोई मतलब कबाहत नहीं। फताबा अलैकुम, बस उसने अब तुम पर नजरे रहमत कर दी। वाफा अनकुम, पिछली जिंदगी में जो हुआ माफ कर दिया तुमको, अब क्या करो? फल आन बाशिरू हुन्ना, अब उनके साथ शौहर बीवी का ताल्लुक कायम कर लो, यानी इफ यू वॉन्ट टू डू इट, डू इट। कब? रमजान की रातों में। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और ढूंढो जो उसने तुम्हारे लिए लिखा। वो क्या है? दो चीजें, प्लेयर और औलाद। शौहर बीवी के ताल्लुक के बीच में जो बुनियाद है वो क्या है कि अगर मर्द की एक बेसिक नीड है तो गैर औरत से ना मांगो, अपनी बीवी से मांगो। हदीस में आता है कि मेराज के सफर में आपको जहन्नुम में कुछ मनाजिर दिखाए गए, जहन्नुम के, कि कुछ लोग हैं औरतें और मर्द, और वहां हंडिया में गंदा खाना पक रहा है और जबरदस्ती फरिश्ते उनको वो खाना खिला रहे हैं, और गरीब खुशबू वाला खाना है, उसकी तरफ नहीं जाने देते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, तो कहा कि ये वो हैं कि जिनके घरों में बाहर हराम से ख्वाहिशात पूरी करते थे, आज अल्लाह भी इनको पाक चीज से दूर कर रहे हैं, और इसका वाइस वर्सा। तो एक तो है प्लेयर, अल्लाह ने जिम्मेदार, देखिए भूख लगती है तो खाने को दिल चाहता है, प्यास लगती है तो पाने को दिल चाहता है, इसी तरह बलूगत के साथ एक और तलब बढ़ती है, फितरी सी तलब है, इसके अंदर बहुत हाहू ही भी नहीं करना चाहिए, ना इस पे बहुत बात करनी चाहिए, ये एक फितरी बात है। तो मर्द के लिए बीवी की सूरत में अल्लाह ने वो प्लेयर रख दिया, इसको भी इबादत करार दिया, वो जब आएंगे आते हैं आगे हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। और साथ ही साथ मा कतबल्लाहु लकुम में औलाद है, कि शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ सेक्स का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक ये ऑब्जेक्ट नहीं है प्लेयर का, बल्कि इसके नतीजे में औलाद तलब करो, अपनी औरतों को भांज ना करो और बच्चे पैदा करो, और उससे फिर तुम अपने लिए सदका जारिया लाओ। आगे हम पढ़ेंगे ली तस्कुनू इलैहा का लफ्ज़ सूरत रोम में आता है, तो गोया कि बीवी शोहर को सुकून देती है हर तरह के लिहाज से। अल्लाह के नबी सफर में भी अपनी बीवियों को साथ रखते थे, क्योंकि बाज दफा सफर में जंगों में इतने बड़े बड़े मुश्किल फैसले होते हैं कि मर्द डिप्रेस हो जाते हैं, तो बीवी जो होती है बंदे को रिलैक्स करती है, उसका गुस्सा ठंडा करती है, उसके अंदर कोई कमी होती है उसको पूरा करती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको करो, वह कुलू व शरबू, और अब खाओ और पियो, हत्ता यतबैन लकुम अलखैत अलअबयद मिन अलखैत अलअस्वद मिन अल फज्र। यहां तक कि पहली बात क्या गई कि शौहर बीवी का ताल्लुक रात में जायज है, अब दूसरी के खाओ और पियो, कब तक खाओ? फजर की स्याह धारी सफेद धारी से अलग हो जाए। ये कौन सा वक्त होता है? बिल्कुल वो वक्त जिस वक्त तक हम लोग खाते से, एक होती है सुबह सादिक सच्ची सुबह, और एक होती है सुबह काजिब। आपको पता है कि जब सुबह होने वाली होती है ना, एकदम एक हल्की सी सफेदी आती है आसमान पे, लगता है सुबह होगी लेकिन फिर वो चली जाती है। ये वक्त होता है जिस वक्त तक हम खा पी सकते हैं, खा लें पी लें, ताल्लुक कायम किया है, गुसल ले लें कर लें करा लें व्हाटएवर, उसके बाद एवरीथिंग इज फिनिश। नो, फिर उसके बाद नमाज, और उसके बाद रोजा रखना होगा, और कब तक रखो? सुम्मा अतिम सियाम इलल्लैल, फिर रात होगा, यानी इसमें एक्सेप्शंस दे दी कि रात में जायज है खाना पीना, दिन में नहीं खाना, अब नहीं खा सकते। यहां पर ये हुक्म पूरा हो गया, बात वाज़े, रात के लिए आसानियां कर दी गई। यहां आखिरी हुक्म इन आयतों के नाते से रमजान का, वला तुबाशिरू हुन्ना, और ना मुबाशरत करो, लफ्ज़ी वज़ाहत में जिस्म का जिस्म से मिलना, कि नाया है शोहर बीवी के ताल्लुक का। यहां देखिए कि कुरान जरूरतन बात तो करता है लेकिन वल्गर लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। यहां से पता चलता है कि छिछोरी बातें, शोहर बीवी की बातें, छेड़खानी फिल्मों में हो, ड्रामों में हो, दोस्तों की महफिल में हो, दुल्हन को कोई सताए बातें करे, ये इंतहाई नापसंदीदा। अच्छे मुहज्जब लोगों का, अच्छी दोस्तों का ये मिजाज नहीं होता कि वो अकेले में बैठ के अपनी दोस्तों से उनकी शादी की बातें करें। इसलिए तो वह शुरू ना, बस मिल लो उनसे, अब ना करो, कब? अंतम आके फोना फिल मसाजिद, जहां एतिकाफ के मसाइल है। नबी सल्लम रमजान की आखिरी 10 रातों में एतिकाफ करते थे, बल्कि 20 रातों का भी आपने किया हुआ है। इन रातों में ताक रात आती है जिसमें कुरान का नजूल हुआ था। ये अहकामात सारे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे किताबो सौम में। एक नई चीज जो मैंने इस साल अभी रिसेंटली सीखी, पहले कभी नहीं सीखी थी और किया भी नहीं, अमल का मौका नहीं मिला, तो ये जो 10 ज़िलहज हैं, 10 दिन गुजरे हैं पीछे, इनके अंदर भी कोई इतिकाफ करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे तो इतिकाफ कभी भी कर सकते हैं, इस दफा छोटा सा करने का मुझे भी मौका मिला। अरब में ये आम कल्चर है कि लोग फिर इन दिनों में रातों को भी करते हैं, दिन को करते हैं। जैसे हज का दिन है, मस्जिद में चले जाए, तो मुझे बहुत ही शौक आ रहा था, तो मैंने औरों को भी देखा, तो फिर असर से जाके मगरिब तक, या जैसे नौजिल्हज जिस दिन हज का दिन है वो मस्जिद में गुजारे। एक नफली इबादत है, इसको बांध नहीं सकते कि इस वक्त से इस तक, लेकिन ये कि इतिकाफ का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की इबादत के लिए जम जाना, उसमें फिर दुनियावी काम कोई नहीं होते। डिटेल जिसकी सारी इंशाल्लाह आप किताबों से हमें सुनेंगे, तो कहा उसमें भी शर्त है कि आम रोजे की रातों में जायज है बीवी के पास जाना, लेकिन एतकाफ की हालत में शौहर या बीवी है तो फिर नहीं जा सकते। ये इशारा इसमें, तिल्क हुदूदुल्लाह फला तक्रबूहा, कमेंट है पूरी बात के ऊपर, ये अल्लाह की हदें हैं, दीज आर दी बाउंड्रीज फ्रॉम अल्लाह, वला तक्रबूहा, इसको सीरियस लो, नॉन सीरियस एटीट्यूड ने अख्तियार करो, ये अल्लाह की हदें हैं, इसके आगे ना जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कायम कर दी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी निशानियां लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं। दूसरी बार वही बात है, गौर करें रुकू की पहली आयत, लाल रोजे क्यों रखो, कुतिब अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिब अलल लजीन मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, वहां ब्रैकेट थी तकवा की, एंड पे फिर सब कुछ करके कहा कि लअल्लहुम यत्तकून, तो गोया के रोजे का लुबे लुबाब तकवा, अपने आप को बचो। और तकवा की तारीफ सुन ले, कभी फिर लिख लीजिएगा, हिफ्ज़ुन नफ्सिन अम्मा योसिम, नफ्स की हिफाजत करना हर उस चीज से जो नफ्स को गुनाहगार कर दे। आंखों का तकवा क्या है? आंखों को हर उस चीज से दूर कीजिए जो आंखों को गुनाहगार कर दे। इसी तरह कानों, जुबान, दिल, पांव, हाथों का तकवा है कि गुनाह करने मुलव्वस करने वाले कामों से अपने आप को रोक लो, तो गोया के आप इंशाअल्लाह ताला फायदा पाओगे। अब आप देखिए यहां तक क्या अहकाम आते हैं रोजे के, बात खत्म हो गई ना। अगली आयत कितनी अजीब आ रही है, आखिरी आयत सबक की, वला और तुम अपने माल आपस में बातिल तरीकों से हड़प ना किया करो, वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और इनको हुक्काम तक पहुंचाने का जरिया ना बनाओ। क्यों? लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको, खा सको गुनाह के साथ, वअंतुम तालमून, और तुम इसको जानते बूझते हो। रमजान में क्या बताया? हलाल से रुको, दो दफा बात कर दी तकवा की, आखिरी आयत में बता दिया कि रोजा हमको क्या सिखाता है कि लोगों के माल बातिल तरीके से ना खाओ। रमजान हमें क्या सबक देता है कि एक महीना अल्लाह के हुक्म से हलाल से रुकते हो तो 11 महीने हराम से रुको। यहां रिश्वत की तरफ इशारा है, ये जो हुक्काम को पैसा दिया जाता है, तुदलू दल्ला दलू डोल डालने को कहते हैं, पानी में जब डोल डालते हैं ना तो एकदम पानी थोड़ा ऊंचा होने लगता है, लेकिन उसमें फिर पानी डाल के निकालते हैं तो कम होता है। इसी तरह रिश्वत उस माल को कहते हैं जो थोड़ी सी पेश की जाए ताकि उसके जरिए बहुत सारा फायदा दिया जाए। इस हदीस में आता है, राशि वाल मुर्तशी कुला हुमा फिन्नार, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो गोया के इधर इशारतन के रोजे रखने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी से रिश्वतें, रोजे की असल को नहीं पाया। क्या तरीके होते हैं लोगों के माल को बातिल से खाने के? आसान सी इसकी तारीफ लिख लें कि जो माल दूसरा आपको नहीं खिलाना चाहता, देना नहीं चाहता, उसकी मर्जी के खिलाफ धों से, धांधली से, किसी न किसी तरीके से उसका माल खा लिया जाए। आमतौर पे तो हम इसमें वो लंबी लिस्ट लिख सकते हैं, मैंने पता नहीं शायद 10-15 चीजें लिखाई थी सबीलुल, उसमें मुझे लगता है कि रब का पैगाम वाली में शायद लंबी लिस्ट बनी थी इसके ऊपर हमारी, लेकिन सबको पता है चोरी, सूद, डाका, ये सब कुछ चीजें बातिल तरीके में आती है ना, ऐसी कमाई का जरिया कि जिसमें दूसरों की हक तलफी हो, लॉटरी और बाकी चीजें आप लोग खुद भी सोच के बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कई दफा अपनी जिंदगी में, हम निजी जिंदगी में लोगों की मर्जी के खिलाफ उनका माल खा जाते हैं, कभी रस्मों के नाम पे, जब कोई मर जाता है किसका दिल चाहता है कि आपको भारी दावतें खिलाए तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे? यतीमों का माल नहीं खाया जाता। इस्लाम नहीं चाहता कि हम दूसरों का माल खाएं और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। कल इस पे थोड़ी सी बात कर दी तो कर देंगे, लेकिन इसमें हर नाजायज जरिया आमदन आ जाता है। खयानत, धोखा, गबन, फ्रॉड, जुआ, गैम्बलिंग जिसको कह लें, सूद, तिजारत की वो किस्में, सौदे, लेने देने, बहुत लंबी डिटेल्स है। अल्लाह ताला हम सबको इस सब से महफूज करें। खास तौर पे तो इंसान को बहुत ही फिक्र लग जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको सही मानों में सेंस के साथ रोजे रखने वाला बना दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, और ऑनलाइन वाले भी खोल दीजिए, इसको भी लिखते जाएं, और अल्लाह ताला हम सब की इस सारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए। अभी इसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रेक होगी। जी, आपका कुछ सवाल है क्विक तो पूछ सकते हैं। फिदिया? जी 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 एक वक्त का खाना उसको बदल दें। हाँ जी, ठीक है, एक वक्त का खाना है। अब आप इतनी कंजूसी से क्यों देंगे वो एक ये? देखिए कि हमेशा याद रखिए कि नेकी के कामों में अल्लाह ताला सिर्फ एक आपको गाइडलाइन देते हैं। अब अगला सवाल ये होगा, चावल देंगे रोटी, घर का पक्का खाना देंगे बाजार का, 5 स्टार होटल का खाना देंगे दूसरा? समझ रहे ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि एक मिस्कीन को खाना, इस पे इतनी बहस है। ये तो आपने एक तफसीर पढ़ी है, मेरे पास तो 10-15 लिखी हुई है, लेकिन आपको वो बताती हूँ जो सबके अंदर से मुत्तफिका राय होती है कि एक मिस्कीन का खाना। आप दो का दे दें, अल्लाह ताला कहते हैं वमा फमन तत्व खैरम, बेहतर और दे दो, रोजा भी रख लो, बाद में मेकअप भी कर लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इन मसलों पे बहुत ज्यादा यानी मीन मेख में नहीं आना चाहिए। जी
क्योंकि मैं अपना तजिया खुद के साथ करती हूँ, तो इसी वजह से आपसे बिल्कुल सही सवाल भी करना चाहती हूँ कि मैंने, मुझे याद नहीं मैंने कितने रोजे छोड़े जब तक मुझको मालूम नहीं था। तो अब मैं, मुझको नहीं मालूम कि अभी मेरा कितना वक्त बाकी है दुनिया में, तो मैं ये सोचती हूँ कि रोजे रखने की कोशिश भी करती हूँ, और क्या मैं इसको पैसों की सूरत में भी अदा कर सकती हूँ?
जी बिल्कुल, देखिए जिसके जितने भी रोजे अंदाजन छुट्टे में ना, उतने मिस्किनों को खाना खिला दें। और हम बाहर रहने वालों के लिए क्या मुश्किल है, आप सोचे 100 बंदे का भी खाने की एक देग खिलवा दे, पाकिस्तान में 5-6 हज़ार रुपए की आ जाएगी, दैट्स इट, राइट? एक हिस्से मा तकद्दुम यानी फॉर सेफ्टी, एक काम तो हो गया। साथ ही नियत कर लें कि अल्लाह मैं इन रोजों को रखूंगी, जिंदगी रही, अगर ना रही तो वो अलीमों भी जाते सदूर है, वो आपके दिल की नियत को जानता है। इरादा करना लाजमी है।
जिसमें स्टार्टिंग करते हो रोजे लाइफ के फर्स्ट 5 मंडे तो थर्सडे एवरी वीक कर सकते हो?
नहीं, उसमें ये होता है कि मंडे का और थर्सडे दो रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। इस इन 2 दिनों में हमारे जो अमाल नामे ना, ये अल्लाह ताला के पास जाते हैं। दिल चाहता है कि मेरा जब अल्लाह के पास मेरा नामे अमाल जाए, नामे अमाल समझते हैं जो भी काम मैं करता हूँ, जो कसब कमाई करता हूँ वो अल्लाह के पास जाता है, तो मैं रोजे से हूँ। ये नफली रोजे होते हैं, ठीक है? तो आप आदत डालने के लिए भी, रमजान सर्दियां आएंगी ना, तो रोजे रखना चाहें तो पीर और जुमेरात का रखना शुरू कर दें। मंडे टू थर्सडे नहीं, ओनली मंडे एंड थर्सडे, आपने तो अपनी क्लास के दिन बना दिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तलब है ना अमल करने की, तो अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से लगा दे। देखिए नियत फर्ज की कर लें। इनका सवाल है कि हमारे रोजे बहुत छूटे हैं, तो अब अगर हम नफिल रखते हैं तो क्या हमारी कमी बेशी होगी? तो ये मसला समझ लें, वैसे कुछ और लोग भी समझा रहे हैं, फिर उनसे भी समझ लें आप, अगर बातें हो रही हैं तो सब सुने, है आपस में ना करें बात तो बेहतर है। देखिए कि आमतौर पे हुक्म क्या है कि जो हमारी फर्ज नमाजों की कमी पेशी हमारी कोशिश के बावजूद भी रह जाती है वो सुन्नत और नफिल नमाजों से पूरी होगी कयामत के दिन। रोजे पूरी कोशिश के बावजूद गिन चुके रख चुके रखेंगे ठीक है हो गए, कोई कमी पेशी होगी तो कसरत से नफिल रोजे रखें, अल्लाह उसमें पूरी कर देगा। ठीक है, हुक्म यही है। अब इसको अप्लाई आपने अपने हिसाब से जिस तरह से करना है। ठीक है, एक ऑनलाइन से भी इनका सवाल आया है कि नबी सल्लम ने एक मौके पर सफर में रोजा रखने वालों पर सख्ती का इजहार किया, तो वो हुक्म कुछ इस किस्म से है कि एक दफा सफर में आपने देखा कि कुछ लोग हैं तो एक शख्स लेटा हुआ है और उसको पंखा झल रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं दरख्त के नीचे लेटा हुआ, तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि इसने रोजा रखा हुआ है हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई भलाई नहीं है। यानी ये हालात आ जाएंगे, अब आप दूसरों के ऊपर ही जान पे पड़ जाएं तो बेहतर है कि अपना रखें, तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन होगा। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो वक्त में बरकत दे, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा हो तो हम पूरे वीक के सवाल टॉपिक्स में से एक आधा घंटा पूरे क्वेश्चन आंसर्स में रख सकते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अजान प्ले कीजिए, ऑनलाइन वाले माइक होल्ड कर ले, कमेंट सबके जो आ रहे हैं इसको पढ़िए। फिदिया देना जरूरी है अगर हम दूसरे दिनों में कंपल जी, ठीक है, ये आपकी हिफाजत के लिए, अगर नियत है कि आपने बाद में रोजे रखने हैं और आप जिंदा भी रहेंगे तो ठीक है ना दें, लेकिन फिदिया देने से एक किस्म की सिक्योरिटी मिल जाती है, एक किस्म का आपने डिपॉजिट दे दिया कि इंशाल्लाह ताला मैं इनको मेकअप कर दूंगा। अच्छा, आप सबके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, ऑनलाइन वालों के लिए भी और ऑन साइट के लिए भी, कि इस वीकेंड पे हमारा जर्मनी में एक नया कोर्स शुरू हो रहा है आप सबके लिए, खास तौर पे जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, शुमाइला आप पे तो फर्ज है, बाकियों के लिए भी जो भी लेट आ रहे हैं, तो इस वीकेंड कल फ्राइडे टाइम सब वेबसाइट पे है। इरम ये पीछे शायद बंद है, शायद खुल नहीं रही, अगर खुला के इनको दिखा दें फ्लायर दिखा देते हैं। बहरहाल टाइमिंग वेबसाइट पे मौजूद है, हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है जर्मनी में, तो उधर चूके वही सब कुछ, कल का लेक्चर जो है वो कुरान पढ़ने के बारे में क्यों पढ़े मोटिवेशन है, सैटरडे और संडे मुझे लगता है कि जर्मनी का टाइम जो है वो 1 से लेके आगे का आपसे 1 घंटा आगे टाइम है, तो पेल टॉक पे लाइव रूम में आएगा, आप लोग जरूर सुने, उसमें वो सब कुछ रिपीट ही होगा ऑलमोस्ट जो आप लोगों को शुरू में बताया, तर्जमा कैसे याद करें, और अब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो आप लोग जहां भी रहते हैं इसको फायदा जरूर उठाइए, जर्मनी में आपकी कुछ सिस्टर दोस्त हैं तो उनको बता दें, वो आना चाहें तो उस मस्जिद में आ जाए, फ्लायर वेबसाइट पे बहरहाल मौजूद है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।